तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए। आज श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की, और आज श्रील व्यासदेव जी का भी आविर्भाव दिवस है और पूर्णिमा का दिन है। श्रील व्यास पूर्णिमा की जय। तो सबसे पहले हम श्रील व्यास पूर्णिमा के बारे में बताना चाहेंगे, गुरु व्यास पूर्णिमा के बारे में। उसके बाद हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य भागवत में एक प्रसंग आता है मध्य खंड में, अध्याय 5, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु सभी परिक्रमों के साथ आज के दिन यानी कि व्यास पूर्णिमा के दिन वो प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद नित्यानंद गोसाई से कि हम व्यास पूजा कहाँ मनाएं। और ये चर्चा हो रही है, और इस चर्चा में श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने व्यास पूजा के बारे में बताया है। चैतन्य भागवत के ऊपर उन्होंने टीका दी श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने। तो यहाँ पर ये प्यार आ रहा है, सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, व्यास पूजा तुम्हार होइबे कौन थाई। ओ जैसे हमने बताया श्री व्यासदेव जी का आविर्भाव दिवस है, तो व्यासदेव जी पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में जन्म लिए, और हम जानते हैं श्री व्यासदेव जी ने ही चार वेदों की रचना की। कलयुग के बद्ध जीवों को देखते हुए उनके उद्धार के लिए श्री व्यासदेव जी ने वेद को चार भागों में बांटा, 18 पुराण, इसी तरह से 18 उपपुराण भी हैं, और उपनिषद 108 उपनिषद। तो इन सब की रचना की श्रील व्यासदेव जी ने। हम जानते हैं कि श्रील व्यासदेव जी बहुत दुखी थे, ये सब ग्रंथ लिखने के बावजूद भी, महाभारत लिखने के बाद भी श्रील व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, और नारद जी मिले उनसे बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी जी के तट पे, और उनसे पूछा कि क्या कारण है, आपने तो इतने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की है फिर भी आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं, लगता है कि आपने परम भगवान श्री कृष्ण के लिए विशुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है ठीक से, और हर जगह किसी ना किसी पुराण में आपने मिश्रित रूप से प्रस्तुत किया है, तो आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें भगवत भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन मिले। तो फिर इसलिए श्रील व्यासदेव जी की जो आखिरी रचना है श्रीमद् भागवतम की रचना की श्रील व्यासदेव जी ने नारद जी की प्रेरणा से। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है, व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ की रचना की, और आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ, और आज के दिन क्या किया जाता है, व्यास पूजा बनाई जाती है, यानी कि व्यासदेव जी की पूजा। और व्यासदेव जी की पूजा कैसे बनाते हैं, गुरु की पूजा करके। और व्यास पूजा बनाने का अर्थ ये भी है कि पूरे गुरु परंपरा की पूजा होती है। ऐसे कई गौड़े वैष्णव भी हैं जहाँ पर वो गुरु की पूजा करते हैं, साथ में पूरे गुरु परंपरा का चित्र भी रखते हैं साथ व्यासासन के साथ, और सबको वो चंदन का लेप लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, और पूरे गुरु परंपरा की पूजा होती है उस। तो ये वास्तव में अर्थ है कि व्यासदेव जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से आज के दिन। लेकिन जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि कई मायावादी संप्रदाय के लोग जो हैं व्यास पूजा का दिखावा कर रहे हैं, और आज के दिन यानी कि आषाढ़ के महीने में, जून जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन यानी व्यास पूर्णिमा के दिन वो भी अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं या वे व्यास पूजा बना रहे हैं, तो उसका खंडन करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने 50वें जन्मदिन पर उन्होंने पहली बार श्री गौड़े मठ में उन्होंने व्यास पूजा प्रारंभ किया। व्यास पूजा जो का उत्सव है उसको प्रारंभ किया। तो ये सबसे पहले शुरू हुआ जब उनकी उम्र 50 साल की थी, माघ के महीने में, जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है, तो उस महीने में ये पहली बार व्यासपीठ मनाई गई। लेकिन प्राचीन समय में शास्त्रों के आधार पर हम देखते हैं कि आज के दिन ही ये चर्चा हो रही है और चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि आपकी व्यास पूजा हम कहाँ मनाएं। महाप्रभु कह रहे हैं आपकी व्यास पूजा कहाँ मनाएं, तो नित्यानंद प्रभु को व्यास देव का प्रतिनिधि मानते हुए। वैसे तो नित्यानंद प्रभु कौन है, वो तो आदि गुरु तत्व है ना, स्वयं बलराम जी हैं। जितने भी गुरुजन हैं इस पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में, वो सब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, है कि नहीं। यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पूजा करवाना चाहते थे और इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो सुभाष पंडित से प्रार्थना की कि वो सबकी व्यवस्था करें। तो इस प्रकार सुभाष पंडित के घर पे ये व्यास पूजा उत्सव मनाया गया। जितने भागवत में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया, मध्य खंड अध्याय 5 में, तो आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार ये जब उत्सव मनाया जा रहा था, भावमय कीर्तन और नृत्य हो रहा था, और हुआ क्या कि नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को माला पहना दिया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को कहा चैतन्य महाप्रभु ने, आज व्यास पूजा है, आप व्यासदेव जी को माल्यार्पण करिए। तो इस तरह से जब कहा, उन्होंने बार बार कहा, तो नित्यानंद प्रभु जवाब नहीं दे रहे थे। और हुआ क्या कि नित्यानंद प्रभु ने वो माला चैतन्य महाप्रभु को पहना दी, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर शंख चक्र गदा पद्म षडभुज रूप, साथ में मूशल और गदा, ये 6 षडभुज रूप जो है उन्होंने प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो व्यास पूजा का ये उत्सव जो बनाया जाता है, वो हमारे संप्रदाय में भी बनाया जाता है और हमारी संस्था में भी हम लोग व्यास पूजा बनाते हैं। अपने गुरु महाराज के आविर्भाव दिवस के दिन श्रील प्रभुपाद ने जिस तरह से स्थापित किया, उसी तरह से ये व्यास पूजा का उत्सव आज भी मनाया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने भी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के परचनों पर चलकर उन्होंने आविर्भाव दिवस के ही उपलक्ष्य में व्यास पूजा मनाया। क्योंकि यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कह रहे हैं कि मायावादी लोग जो व्यास पूजा मनाते हैं, वो दिखावा क्यों है। वो दिखावा इसलिए है क्योंकि वो पूरे अहंकार से भरे होते हैं, वो तो वास्तव में किसी को गुरु के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, स्वयं नारायण बन जाना है ना। और गुरु भी उसने, उन्होंने अगर ध्यान धारण किया हुआ है, इसे उद्देश्य से धारण किया है कि हम भी एक ना एक दिन नारायण बन जाए, है कि नहीं। इसलिए एक दूसरे को जब वो संन्यास लेते हैं, होता क्या है कि पूर्णिमा के दिन संन्यास लेने का बड़ा महत्व है, शास्त्र में बताया गया है। तो पूर्णिमा के दिन संन्यास लेते हैं और उस दिन वो क्या करते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपने गुरु की पूजा करते हैं, तो अंततः वो क्या स्थापित करते हैं, हम सब क्या है, नारायण है। संन्यास लेने के बाद वो एक दूसरे को नारायण करके संबोधित करते हैं। इसलिए जो संन्यास वेश धारण करते हैं, उस दिन वो सीखा निकाल देते हैं, जनेऊ निकाल देते हैं, क्योंकि अब हम क्या हो गए, नारायण हो गए। तो एक दूसरे को नमो नारायण करके वो संबोधित करते हैं। तो इसलिए केवल व्यास पूजा का एक दिखावा होता है, लेकिन केवल उसमें मायावाद दर्शन का मिश्रण है। लेकिन असली व्यास पूजा श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम आचार्य के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, वो दिन वास्तव में हमारा व्यास पूजा का दिन होता है। यानी कि एक प्रमाणिक वैष्णव भक्त के लिए व्यास पूजा तो प्रत्येक दिन ही व्यास पूजा है, क्योंकि शिष्य को तो अपने गुरु के लिए, गुरु परंपरा के लिए कृतज्ञ होना चाहिए पूरे जीवन भर। उसके लिए पूरा जीवन, हर साल, हर महीना, हर दिन, हर क्षण जो है वो व्यास पूजा है। क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि बहुत बड़ा कर्जा है मैंने चुकाना है, जो कि मैं नहीं चुका सकता हूँ। जो गुरु ने मुझे अनमोल धन दिया है आध्यात्मिक दिशा देकर, और ये मेरे ऊपर कर्जा है, ये कर्जा मैं कैसे चुका सकता हूं। तो जिस तरह से श्राद्ध के दिन यहां बता रहे हैं कि जिस तरह श्राद्ध के दिन पूर्वजों को पिंड दान किया जाता है ऋण चुकाने के लिए, किसी ना किसी के व्यक्ति प्रति हमारा कर्जा रहता है कि नहीं। जब तक हम प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं लेते हैं और उनकी शरणागत नहीं होते हैं तो हम ना किसी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। देवताओं के प्रति ऋण है, शिक्षकों के प्रति ऋण है, और अगर राजा है तो राजा के प्रति ऋण है, माता पिता के प्रति ऋण है। तो इस प्रकार हम लोग ऋणी रहते हैं जीवन भर, और इसी ऋण को चुकाने के लिए हम बार बार देह बदलते रहते हैं, शरीर का परिवर्तन करते रहते हैं। तो और ये ऋण हम लोग चुका नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम प्रमाणिक गुरु का आश्रय ले लेते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, तो हमारे सारे ऋण जो हैं वो चुकता हो जाते हैं। जैसे कि गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भगवान की शरण पूरी तरह से लेने का अर्थ है कि प्रमाणिक गुरु की शरण लेना पूरी तरह से। जब प्रमाणिक गुरु की हम शरण लेते हैं तो होता क्या है, सही काले कृष्ण करे आत्मसम, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। एक बार हमने दीक्षा ले ली तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा दूसरा विचार हम मन में नहीं ला सकते हैं। इसलिए जो सोचना है हमें वो दीक्षा से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कर्म कांड का एक कार्य नहीं है कि आज हमने यहां से दीक्षा ले ली और कल कहीं और से दीक्षा ले रहे हैं। जैसे रोज कपड़े बदलते हैं तो वैसा नहीं है। तो दीक्षा जो है बहुत ही गंभीर विषय है, और जिस दिन दीक्षा लेते हैं, आचार्य की शरण में जाते हैं या गुरु की शरण लेते हैं, वो दिन ही वास्तव में शिष्य के लिए व्यास पूजा का दिन है। और इसलिए साल में एक बार विशेष रूप से हमें उत्सव मनाते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु परंपरा का गुणगान करते हैं, इस तरह से हम व्यास पूजा मनाते हैं। तो कहने का मतलब ये एक भाव प्रकट करने का दिन होता है कि हमने इतना बड़ा कर्जा जो लिया हुआ है उसको हम कैसे चुकाएं। तो ये हम भाव विशेष रूप से प्रकट करते हैं गुरु महाराज के आविर्भाव दिवस के दिन। और यहां पर यह भी बताया गया है व्यास पूजा उत्सव कैसे मनाया जाता है, पाद पद में पदार्पण, यानी कि पांच जो पदार्थ हैं पंचामृत जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से श्री गुरु के चरणों को धोया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने यह भी बताया है, श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, केवल फूल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, गुरु को केवल फूल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, कि यह कोई वैदिक रिचुअल नहीं है कि रोज हम प्रभुपाद को फूल चढ़ाने आते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का हम लोग सख्ती से गंभीरता से उनका पालन करें, और अपने आप को हमेशा ये सोचे कि हम कर्जे में हैं। तो इस तरह से हम लोग गुरु की शरण में रहकर हम लोग गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पाते हैं। तो ये कुछ हमने संक्षेप में आपको बताया व्यास पूजा के बारे में। अब हम आपको बताना चाहेंगे श्री सनातन गोस्वामी के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कि कई जो गौड़िया वैष्णव हैं वो एकादशी के दिन से चातुर्मास्य का प्रारंभ व्रत प्रारंभ कर चुके हैं। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि चतुर्मास्य जो है या तो आप एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं और या फिर पूर्णिमा के दिन से। तो हम अपने संस्था में इस्कॉन में पूर्णिमा के दिन से करते हैं, आज के दिन से हम लोग चतुर्मास्य का व्रत प्रारंभ कर देते हैं। तो पहले महीने हम लोग क्या नहीं खाते हैं, शाक। तो आज से जो है शाक सेवन वर्जित है एक महीने के लिए। कई बार कई लोग बोलते हैं आज के दिन से नहीं है कल से है, कल से प्रथमा है, आज पूर्णिमा है तो कल प्रथमा है तो कल से उपवास होगा। लेकिन हरिभक्ति विलास में ऐसा नहीं लिखा है, हरिभक्ति विलास में लिखा है कि पूर्णिमा के दिन से ही चतुर्मास का व्रत शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज से ही हम ये चतुर्मास का दिन जो है प्रारंभ कर रहे हैं। और ये चार विशेष महीने जिसमें भगवत भक्ति करने से बहुत विशेष लाभ मिलता है, तो इन चार महीनों में अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करके हम लोग पूरा लाभ उठा सकते हैं चतुर्मास का। तो आज के दिन श्रील सनातन गोस्वामी ने अपना देह का त्याग किया, उनका दुर्भाव हुआ और पूरे जो ब्रज में श्रील सनातन गोस्वामी सभी ब्रजवासियों के इतने प्रिय थे कि सभी ब्रजवासियों ने क्या किया, आज केश मुंडन किया। तो इसलिए आज के दिन को ब्रज में मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर आज के दिन क्या किया था, गिरिराज जी की परिक्रमा की, क्योंकि स्वयं श्रील सनातन गोस्वामी पूरे जीवन भर क्या किए, ब्रज में जब रहे तो वो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। तो आज बहुत भीड़ होती है वहां पर गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, कम से कम 5 लाख लोग परिक्रमा करते हैं आज के दिन। हमने 3-4 बार किया है आज के दिन, तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। और 5 किलोमीटर दूर जो है आपको गाड़ियों को रोकना पड़ता है, और दोपहर में रात को पूरी रात लोग परिक्रमा करते हैं, रात को ज़्यादा भीड़ होती है दिन से। तो सनातन गोस्वामी जो है, हम जानते हैं षट गोस्वामियों में से सबसे बड़े थे उम्र में, और शिलरूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। और यहाँ पे कुछ जो वर्णन हमें प्राप्त हुआ है श्री चैतन्य चरतामृत से और कुछ अन्य ग्रंथों से, तो उसको हम लोग सुनाने का प्रयास करेंगे। सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत विस्तार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरतामृत में दिया है, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी बहुत विस्तार से मिलता है। कई ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने पहले से ही बता दिया कि आप ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा नाम मत लिखिए, हमारे बारे में आप चर्चा ना करें। जैसे लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, इनके बारे में इतनी चर्चा नहीं की चैतन्य चरतामृत में, क्योंकि खुद ही इन्होंने मना कर दिया। लेकिन और कई ग्रंथ हैं जहाँ पर इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है अन्य गोस्वामियों के बारे में। तो श्री सनातन गोस्वामी के बारे में यहाँ बतलाया गया है, आप जरा ध्यान सुने। तो सबसे पहले हम बताएंगे 1514 अक्टूबर में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर चले, और उनके साथ असंख्य उनके साथ उनके अनुयायी थे, पार्षद थे, भक्त लोग थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जैसे गांधी ने शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस प्रकार का एक संकीर्तन आंदोलन, प्रभुपाद ने कहा पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, संकीर्तन आंदोलन। तो हालांकि वो वृंदावन जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में गौड़ देश की तरफ चले गए, और गौड़ देश में कहाँ जाकर मिले, रामकेली में श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिले। और उस समय सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में, उनके राज्य में प्रधानमंत्री थे, और जो श्रील रूप गोस्वामी हैं वो वित्त मंत्री थे, और साथ में सनातन गोस्वामी का नाम पड़ा था साकर मलिक, और श्री रूप गोस्वामी का नाम पड़ा दबीर खास। उनका नाम भी बदल दिया गया, क्योंकि आप किसी मुसलमान के पास जाके आप नौकरी करते उस समय, तो आपको वो नाम भी बदल दें। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनको मिले, रामकेले में मिले, और वहाँ पर रामकेले में जब मिले तो उनको मिलते ही उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदल दिया कि आज से आपका नाम क्या है, सनातन गोस्वामी है, और आपका नाम क्या है, रूप गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिले तो बड़े प्रसन्न हुए और उनका आलिंगन किया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आए। देखिए, जब भगवान देखते हैं कि भक्त शरणागत है और प्रेमय सेवा कर रहा है, तो स्वयं ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं। जिस तरह से मधुवन में ध्रुव महाराज जो हैं तपस्या कर रहे थे, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, भागवत में क्या लिखा है कि मधुवन में भगवान जो हैं ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए गए, उनसे मिलने के लिए गए। उनकी तपस्या को देखकर भगवान ध्रुव महाराज का दर्शन करना चाहते थे, उनसे मिलने के लिए गए। तो इस प्रकार अब यही शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद को बताया कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण तुम्हें देखना चाहें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले और वो चाहते थे कि उनके द्वारा वृंदावन की जो लीला स्थलियां हैं, लुप्त लीला स्थलियां हैं, शिव विग्रह की पुनः स्थापना वो करना चाहते थे, मंदिरों का निर्माण करवाना चाहते थे उनके माध्यम से, तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले भी। तो रूप और सनातन गोस्वामी एक राज परिवार के थे, राजघराने से थे, कर्नाटक से थे और कर्नाटक सरस्वत ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। और लघु वैष्णव तोषणी में इनके बारे में बताया गया है कि इनका वंश परंपरा जो है कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इनकी वंश परंपरा जो है के बारे में बताया गया है कि कर्नाटक के एक राजा थे जिनका नाम था सर्वज्ञ और उनके पुत्र का नाम था राजा अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के दो पुत्र थे रूपेश्वर और हरिहर। लेकिन हरिहर ने क्या किया, सारा धन संपत्ति उससे लूट लिया और उन्होंने रूपेश्वर को सिंहासन से उतार दिया और उनको वहां से भगा दिया। तो रूपेश्वर जो है फिर उस शिखर में आके रहने लगे और उसके बाद उनके जो पुत्र सुपुत्र थे पद्मनाभ वो भी उनके साथ रहने लगे। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि वो गंगा जी के तट के पास रहें, बकल चंद्रद्वीप नाम के जिले में। तो इस कारण से वो राजा धनुज मर्दन के निमंत्रण से कहाँ पर रहने लगे, बकल चंद्रद्वीप के पास। तो उनके पांच पुत्र थे, पांच पुत्र कौन कौन थे, पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। मुकुंद के पुत्र थे कुमारदेव और कुमारदेव के कई पुत्र हुए जिसमें तीन प्रमुख वैष्णव थे जिनका नाम था अमरदेव, संतोष देव और वल्लभ। और बाद हम देखते हैं अमरदेव का नाम पड़ा सनातन गोस्वामी और संतोष देव का नाम पड़ा श्री रूप गोस्वामी और वल्लभ जो थे उनका नाम क्या पड़ा, अनुपम गोस्वामी। उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि 1465 में के आसपास उनका जन्म हुआ और इस प्रकार उनके बारे में बताया गया है। क्योंकि जब महाप्रभु के सन्यास लेने से पहले ही सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री बन चुके थे, और महाप्रभु ने सन्यास कब लिया था, 1511 में, है ना। तो 1511 में सन्यास लिया था, तो उस समय उनकी आयु समझ लीजिए कितनी है, 23 साल की होगी, 23 या 24 साल की है। और रूप गोस्वामी तो उनसे भी छोटे थे, 18 या 19 साल के। तो ये इतना सुनने में ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उनकी उनका जन्म जो है 1492 में हुआ, तो 1492 में हुआ अगर तो उस हिसाब से तो उम्र की बहुत छोटी थी, लेकिन 1465 में बताया जाए तो वो आंकड़ा बिल्कुल ठीक निकलता है। तो इस प्रकार लगभग 50 साल के होंगे जब वो प्रधानमंत्री बने थे नवाब हुसैन शाह के पास। उनकी शिक्षा के बारे में बताया जाता है सनातन गोस्वामी के, जैसे हमने बताया दादा थे मुकुंद देव, ये मुकुंद देव थे वो हुसैन शाह के पास कार्य करते थे और बड़े ऊंचे पद पे थे। और जब उनके पिता कुमार देव की मृत्यु हो गई तो मुकुंद देव ने ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की शिक्षा का कार्यभार संभाला, जिम्मेदारी उठाई और उनको कहाँ भेजा, विद्यावाचस्पति के पास न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए भेजा। उससे पहले वो सार्व भट्टाचार्य के पास भी गए अध्ययन करने के लिए और साथ में वो रामभद्र आचार्य के पास, रामभद्र वाणी विलास के पास भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और क्योंकि उस समय क्योंकि मुसलमान राजा थे और सरकार में अधिकांश कार्य जो है वो अरबी और फारसी भाषा में होता था, तो इस कारण से मुकुंद देव ने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को सप्तग्राम भेजा और वहाँ पर उनके जो मित्र थे जिनका नाम था फरुखुद्दीन, उनके पास भेजकर उनको कहा कि आप इनको अरबी फारसी भाषा सिखाएं। हालांकि ये भाषा तो उन्होंने पूरी तरह से नहीं सीखी थी, क्योंकि उनका हमेशा उनकी रुचि कहाँ रहती थी, श्रीमद् भागवत सुनने की। तो सप्तग्राम भी जब गए थे तो वहाँ जाकर भी वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे। और बाद में श्रील सनातन गोस्वामी ने परमानंद भट्टाचार्य से, जो कि एक सिद्ध पुरुष थे, वैष्णव थे, उनसे उन्होंने श्रीमद् भागवत की गुहतम अर्थ को भी सीखा। और वृद्ध वैष्णव तोषणी में श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने इन सभी शिक्षा गुरुओं को प्रणाम किया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारी परंपरा में जितना शिक्षा गुरु का महत्व है, जितना दीक्षा गुरु का महत्व है, उतना शिक्षा गुरु का भी उतना ही महत्व है। तो भागवत परंपरा में, हमारे भागवत परंपरा में पांचरात्रि की विधि भी आ जाती है। तो दीक्षा और शिक्षा दोनों साथ हैं। जितने भी आप आचार्य देख रहे हैं ऑल्टर में, उन सबके दीक्षा गुरु हैं और सबके शिक्षा गुरु भी हुए हैं। हमारे संप्रदाय में जितने भी आचार्य हैं सबके शिक्षा गुरु भी हैं और सबके दीक्षा गुरु भी हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने दीक्षा ली विद्यावाचस्पति से, और इसका प्रमाण मिलता है हमें नाना प्रकार के शास्त्रों से, और खासकर भक्ति रत्नाकर में श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने ये प्रमाण दिया है कि उन्होंने विद्यावाचस्पति से दीक्षा ग्रहण की। लेकिन कई जगह पर यह भी मिलता है सुनने को कि सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं। तो जब इस प्रकार बताया जाता है कि इनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी गुरु के रूप में स्वीकार किया, विद्यावाचस्पति को भी गुरु के रूप में स्वीकार किया, रामभद्र वाणी विलास को भी गुरु के रूप में स्वीकार किया, नहीं, और श्री परमानंद भट्टाचार्य को भी गुरु के रूप में स्वीकार किया। और इस तरह से जब हम सुनते हैं तो इसका अर्थ यह है कि शिक्षा गुरु हमारे कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो है वो एक ही होते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि दो दीक्षा गुरु होते हैं, क्योंकि जन्म देने वाला व्यक्ति एक ही होता है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। आगे कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे सनातन गोस्वामी, ये भी कथा है कि किस तरह से सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और वित्त मंत्री बनाया। तो एक बार की घटना है, राजा हुसैन शाह गौड़ देश में एक मंदिरा बना रहे थे। मंदिरा का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल के पास भी बहुत सारे वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, खंबे जैसे हैं, मीनार जिसको कहते हैं, हाँ जैसे कुतुब मीनार है, है ना, तो उसी को मंदिरा कहते हैं। तो वो मंदिरा बनवा रहे थे और हुसैन शाह अपने मिस्त्री के साथ उच्च वहाँ चढ़े, सबसे ऊपर चोटी पे चढ़े जहाँ तक बना था। तो चढ़े तो उसने कहा कि महाराज एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता तो मैं इससे भी बहुत अच्छा बना सकता था। तो नवाब ने जब सुना, हुसैन शाह ने जब सुना तो बड़ा गुस्सा आया उसको, अगर तुम अच्छा बना सकते थे तो तुमने अच्छा बनाया क्यों नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। लेकिन साथ में हुसैन शाह बहुत खुश भी थे, क्योंकि चढ़ने से पहले उन्होंने ये कहा था कि जो तुम्हें पुरस्कार चाहिए तो मांग सकते हो, तो बात के बड़े पक्के थे उन दिनों में कम से कम लोग। तुमने कहा ठीक है, इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु हो, तुम जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। वो कहते ठीक है, ये मंदिरा का नाम जो है मेरे नाम से हो जाए। तो उस मंदिरा का नाम क्या पड़ा, पीरू शाह मंदिरा। तो जैसे हमने बताया कि ये मंदिरा जो है वो पूरा नहीं बना था। तो एक दिन हुसैन शाह अपने सिपाही के साथ फिर से ऊपर गए और देखा कि ये मंदिरा पूरा बना नहीं है। तो उन्होंने सिपाही को कहा, जिसका नाम हिंगा था, उसको कहा कि तुम जाओ मोरग्राम, बड़े गुस्से में कहा। और जितने गुस्से में कहा कि वो जो सिपाही था वो डर गया, उसको पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाके करूंगा क्या मैं, वो घबरा के चला गया और मोरग्राम पहुंच गया। तो जब मोरग्राम पहुंचा तो वहां पर सनातन गोस्वामी से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, इनके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, बहुत बड़े विद्वान हैं, पूरा वैष्णव समाज इनको सम्मान देता है, बहुत बुद्धिशाली हैं। तो उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि हुसैन शाह जो है उन्होंने मुझे यहाँ मोरग्राम भेज दिया, गुस्से में कह दिया, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वास्तव में उनके भेजने का क्या उद्देश्य था। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, आप मेरी सहायता करें। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप जाओ और कुछ अपने साथ जो क्या कहते हैं उसको मिस्त्रियों को ले जाओ, जो दक्ष मिस्त्री हैं उनको आप लेकर जाओ साथ में, तो इससे क्या होगा कि आपका राजा बड़ा खुश हो जाएगा। तो जब पहुंचे वहां पर, वो सिपाही जब पहुंचा और सभी मिस्त्रियों को लेकर आया जो वो मंदिर बनाने में दक्ष थे, तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैंने तो तुम्हें बताया नहीं था पूरी बात, तो तुम्हें कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक हैं सनातन गोस्वामी नाम के एक बहुत बड़े संत हैं, उनसे पूछा था मैंने, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही तेज आदमी लगता है, बहुत बुद्धि है इसके पास, तो इसको तो मुझे अपना खास आदमी बनाना चाहिए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को उन्होंने बुलाया। साथ में ये भी बताया जाता है क्योंकि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को ये डर था कि कहीं अगर वो मना कर देंगे तो फिर ये क्या करेंगे, ब्राह्मणों को दुखी करेंगे, वैश्यों को दुखी करेंगे, और इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता नहीं क्या क्या कर जाएं। तो इसलिए वैश्य समाज की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, ये पद स्वीकार किया। और इसीलिए सनातन गोस्वामी का नाम जो है वो साकर मलिक पड़ा, जैसे कि हमने बताया साकर मलिक नाम था उनका, और रूप गोस्वामी का नाम पड़ा दबीर खास। तो दबीर खास का मतलब होता है वित्त मंत्री थे, इसका एक और अर्थ ये बताया कि अब फारसी भाषा में इसका अर्थ ये है दबीर खास, यानी कि मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव। और मलिक जो है वो भी अरबी शब्द है, जो कि मलिक जो है वो मलिक का मतलब होता है राजा। जैसे शिल प्रभुपाद जी की परिवार के बारे में बताया जाता कि मलिक परिवार से थे, मलिक परिवार के लोग रहते थे, तो इस प्रकार मलिक का मतलब होता राजा। और साकर का मतलब होता है यानी कि राजा के अधीन। तो सनातन गोस्वामी को हालांकि प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन साथ में उनका नाम दे दिया साकर मलिक, तुम राजा के अधीन हो फिर भी, और तुम हो वित्त मंत्री और साथ में निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी। तो इस प्रकार वो उनकी सेवा करते थे। और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी हालांकि वो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बन गए नवाब हुसैन शाह के, लेकिन कभी वो सुखी नहीं रह पाते थे। और जब शाम को वापस राम के लिए पहुंचते तो वहां जाकर क्या करते, वो ध्यान लगाते, जप करते, लीलाओं का स्मरण करते। और राम के लिए में सनातन गोस्वामी ने वृंदावन का वातावरण बनाया। आज भी आप बांग्लादेश जाएंगे और राम के लिए जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो ये लीला स्थलियां अभी भी हैं। तो सनातन गोस्वामी ने वहां पर बनवाया, तो क्या क्या बनवाया उन्होंने कुंड और कई लीला स्थलियों का वहां पर निर्माण कराया, जैसे कि मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया वहां पर, और श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, और रंग देवी कुंड, सुरभि कुंड, और इंदु रेखा कुंड, ये सब लीला स्थलियां, ये सब कुंड भी जो है आज भी देखने को मिलती हैं अगर आप राम के लिए जाएंगे तो। कभी हमें ये योजना बनानी चाहिए कि हम तो नदी मंडल परिक्रमा तो करते हैं, तो कभी हमें गौड़ मंडल की भी परिक्रमा करनी चाहिए जिसमें बांग्लादेश भी आ जाता है ना, कि गौड़ देश हमने जैसा बताया था पहले भी कि गौड़ मंडल जो है वो भी 84 कोस का है, और नवदी मंडल जो है वो 16 कोस का है, जिस तरह से ब्रज मंडल है और जिस तरह से वृंदावन है, तो कोई भेद नहीं है। तो जब गौड़ मंडल की बात की जाती है उससे बांग्लादेश में वो स्थान भी आ जाते हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो बांग्लादेश में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं देखने को। ये तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की कृपा है जिसके कारण ये देश अलग हो गया, नहीं तो अभी हम जाके देख सकते थे, अभी वीजा लेना पड़ेगा आपको। तो भक्ति रत्नाकर बताया गया है कि कदम वृक्ष के नीचे वहां पर श्याम कुंड के निकट बैठकर वो वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते थे। अब उनके बारे में बता रहे हैं हम कि किस तरह सनातन गोस्वामी को छुटकारा मिला, सबसे पहले कैसे उनको कैद किया गया, اور کیسے پھر انہوں نے استعفیٰ دیا. نواب حسین شاہ نے کیا کیا, انہوں نے آکرمن کر دیا اڑیسہ میں اور انہوں نے کئی مندر توڑوائے. ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے 12ویں شتابدی میں سب سے پہلے آئے تھے محمود غزنوی ہے نا, اور جو متھرا میں جو جنم استھان ہے وہاں پر بہت بڑا مندر تھا بھگوان کرشن کا, وہاں رادھا کرشن کا مندر تھا بہت بڑا, اور سب سے پہلے وہ مندر توڑا گیا تھا ان کے دوارا. اور جس طرح سے جراسن نے 17 بار آکرمن کیا تھا اسی طرح سے انہوں نے بھی آکرمن کیا اور کئی مندروں کو توڑے گئے, مندر توڑے گئے, کئی وگرہ جو ہیں اس کا استعمال کیا قسائیوں نے, شلاؤں کا استعمال کیا قسائیوں نے وزن ناپنے کے لیے. تو اس پرکار یہ مسلمانوں نے جو ہے آتنک مچا رکھا تھا. اور جب اڑیسہ میں آکرمن کیا تو سناتن گوسوامی اب سہن نہیں کر پائے, انہوں نے کہا بہت ہو گیا اب یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ کئی دنوں تک وہ نہیں آئے, اور یہاں تک کہ کی کیا ہوتا کہ جب وہ واپس جاتے اپنے گھر یعنی استھان میں بھجن ستھلی میں تو وہاں جا کر وہ پرشچرن کرتے, اور پرشچرن کے مادھیم سے انہوں نے اپنے آپ کو اور پوتر کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے برندان جا کے لیں گے. تو اس پرکار سناتن گوسوامی نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ روپ گوسوامی کو یہ بتایا کہ آپ سب سے پہلے جائیں اور پھر میں بعد میں آؤں گا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے شیلا روپ گوسوامی نے جتنا ان کو دھن پراپت ہوا اس کا کیسے وترن کیا. شیلا روپ گوسوامی فتح آباد گئے اور ساتھ میں چندردیپ بھی گئے, آدھا انہوں نے جو دھن ہے وہ انہوں نے براہمن اور ویشوں کو دے دیا, ایک چوتھائی جو ہے انہوں نے اپنے پریوار کے لیے رکھا اور ایک چوتھائی انہوں نے کچھ براہمنوں کے پاس رکھوایا آپاتکالین استھتی کے لیے, اور قریب 10,000 سونے کی مدرائیں انہوں نے رکھوائیں ایک ویپاری کے پاس, کیونکہ ان کو پتا تھا سناتن گوسوامی جو ہیں وہ کہاں پر ہیں, جیل میں ہیں, تو کبھی بھی ان کو دھن کی آوشکتا پڑے گی. اور یہاں تک ہی بتایا گیا ہے کہ شیلر روپ گوسوامی نے 22 لاکھ سونے کی مدرائیں انہوں نے وترن کی تھی بھائیوں میں, 22 لاکھ سونے کی مدرائیں, اتنا دھن تھا ان کے پاس ہے نا. تو شٹ گوسوامیوں میں جو کچھ گوسوامی ایسے تھے جن کے پاس اتنا دھن تھا, جس لیے شریواس آچاریہ کیا بول رہے ہیں شٹ گوسوامی اشٹکم میں, تیکتوا تورنمشیش منڈل پتی شرینیم سدا تچھوت بھوتوا دین گنیش کو کرنیا کوپین کنتھاشرتو گوپی بھاور سامرتاد لہری کلول مگنو مہور وندے روپ سناتنو رگو یگو شری جیو گوپال کو تیکتوا تورنمشیش منڈل پتی. منڈل پتی مطلب کیا ہے, منسٹر شپ, اونچے اونچے پد جو ہیں انہوں نے تچھ سمجھ کر تیاگ دیا. شری روپ گوسوامی نے, سناتن گوسوامی نے, رگھوناتھ داس گوسوامی نے اتنا دھن ہونے کی 22 لاکھ سونے کی مدرائیں بتائی انہوں نے بانٹ دی تجھ سمجھ کر, تو بالکل بھی آسکت نہیں تھے یہ, حالانکہ اونچے اونچے پد میں تھے, پردھان منتری کے پد میں تھے سناتن گوسوامی, روح گوسوامی ایک نجی سچیو تھے, دبیر خاص تھے وہ, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو تیاگ دیا. تو سناتن گوسوامی کئی دن تک جو ہے وہ نہیں جا رہے تھے جیسے ہم نے بتایا راجہ کے پاس, تو راجہ کو بڑا شک ہوا, انہوں نے یہ سندیش بھجوایا تھا کہ وہ بیمار ہیں. تو راجہ نے اپنے راج وید کو بھیجا, وید کو بھیجا, وید جی کو بھیجا پتہ لگانے کے لیے کہ واسطے میں وہ بیمار ہیں یا اور کوئی کارن ہے. تو جب وہ ان کے گھر پہنچے جہاں پر وہ رہتے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا, ایسی ہی سبھا چل رہی تھی, بہت سارے ویشنو بیٹھے تھے اور سناتن گوسوامی بھکتوں کے ساتھ شریمد بھاگوتم کے اوپر چرچا کر رہے تھے. تو یہ جب دیکھا یہ بولے کہ یہ کون سی بیماری ہے, تو اس نے تو راجہ کو جھوٹ بولا. تو راجہ بہت زیادہ کرودھت ہوا اور سوئم راجہ گیا رام کیلی گیا ملنے کے لیے, اور جب رام کیلی میں جا کر دیکھا سوئم حسین شاہ نے کہ یہ سادھوؤں کے ساتھ مل کر بھاگوت چرچا کر رہا ہے, تو راجہ نے آدیش دیا کہ ان کو قید کر لیا جائے. پہلے تو انہوں نے سمجھانے کا پریاس کیا کہ آپ سب چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ سیوا میں. سناتن گوسوامی نے نڈر ہو کے کہا कि अब मैंने पूरी शरण ले ली है महाप्रभु की, कृष्ण की मैं पूरी शरण ले चुका हूं, अब तो आज्ञा मैं केवल उनसे ही लूंगा और किसी से मैं आज्ञा नहीं ले सकता हूं, तो कृपा करके मुझे आप बख्श दें। तो हुसैन शाह को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उनको कैद कर लिया और ओडिशा में जब आक्रमण किया था हुसैन शाह ने, तो बहुत बड़ी हार हुई उनकी, हार गए। और बाद में खुद वो आक्रमण के लिए गए, युद्ध करने के लिए गए महाराज प्रताप रूप से, और महाराज प्रताप ने उनको बहुत बुरी तरह से हराया। तो उस समय महाराज प्रताप रूप भी जो है इसलिए ओडिशा के राजा हुए थे, उन्होंने हुसैन शाह को हराया था। और हमने जैसे बताया कि सनातन गोस्वामी जेल में थे और सनातन गोस्वामी निरंतर प्रार्थना कर रहे थे महाप्रभु से कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँगा। तो उन्होंने एक विचार किया, और उन्होंने विचार क्या किया, उन्होंने वहाँ का जो जेलर था उसको कहा कि जो मैं तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास 7,000 मुद्राएं हैं, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि रिश्वत, लेकिन मुझे यहाँ से छोड़ दो तुम। उन्होंने कहा मैं अगर तुम्हें छोड़ दूंगा, आपको छोड़ दूंगा, तो राजा मुझे बहुत सजा देगा और फिर मेरे परिवार का क्या होगा, वो माँ मुझे मार भी डालेगा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा तुम इसकी चिंता ना करो, तुम राजा को कहना कि तुम मुझे जंजीरों के साथ शौच क्रिया के लिए ले गए थे और मैंने वहीं से छलांग मार दी नदी में। तो इस प्रकार जब उसने देखा, जेलर ने देखा कि काफ़ी सोने की मुद्राएं मिल रही हैं, 7,000 सोने की मुद्रा मिल रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि फिर तो बड़ा अच्छा सौदा है। तो उन्होंने फिर क्या किया, तुरंत ही सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। और इस प्रकार सनातन गोस्वामी जो है वो जेल से छुटकारा पाए। तो सनातन गोस्वामी वहाँ से वृंदावन के लिए चले, और वृंदावन जब जा रहे थे तो साथ में उनके सेवक भी साथ में, जिनका नाम था ईशान ठाकुर। और रास्ते में वो एक धर्मशाला में एक होटल में ठहरे, और उस होटल का जो मालिक था उसका नाम था भूमिका, और उसके पास एक जोशी था। वो जोशी पता लगा लेता था कि जो यात्री आते हैं इनके पास कितना धन है। तो जोशी ने बताया कि इनके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। तो जब पता चला कि 8 सोने की मुद्राएं हैं, तो उस होटल के जो मालिक ने बड़ी सेवा की, इन लोगों की, सनातन गोस्वामी की बड़ी सेवा की, खूब उनको अच्छा ध्यान रखा, उनको बहुत सेवा की उनकी। तो सनातन गोस्वामी कुछ समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, कि कई बार कोई विषय व्यक्ति अगर ज़्यादा सेवा करता है तो शक हो जाता है कि नहीं, या कई बार हम भी लोग किसी की सेवा करते हैं तो हम पर लोग शक करने लगते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कभी किसी का। ये संसार का ऐसा ही नियम है, अगर आप किसी का ध्यान भी रखो ज़्यादा तो उसमें भी लोग शक करते हैं कि क्या कारण ये इतना मेरे बारे में केयर कर। और जिस दिन अगर आप उसका ध्यान ही रखोगे तो वो टूट जाते हैं, बोलते हैं इतना प्रभु जी ध्यान रखते थे अब तो पूछते भी नहीं। तो प्रचार भी ऐसे ही है, प्रचार में ऐसे ही होता है कि आप किसी का अच्छा करो तब भी आपको दुखी होना है, अब बुरा करो तब भी आपको दुखी होना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज अ थैंकलेस टास्क, है कि नहीं। तो इस तरह जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि भूमिका को पता चल गया है, तो सनातन गोस्वामी उनके चेहरे को देख के पहचान गए थे, है ना, जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो तो पहचान जाएंगे कि मन में क्या चल रहा है इनके। तो उन्होंने खुद ही जो है उन्होंने क्या किया, उनको सोने की मुद्रा दे दी, 7 सोने की मुद्रा दी। तो वो क्या कहते हैं, भूमिका कहने का, लेकिन मेरे जोशी ने तो कहा था कि आपके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। तो कहा नहीं, 7 ही सोने की मुद्राएं हैं, आप उसको रख लो। तो बाद में जब वो जाने लगे, वहां से निकले, तो सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से पूछा, ईशान ठाकुर से, तुम्हारे पास क्या एक और सोने की मुद्रा है? तो उसने कहा है। तुमने क्यों नहीं दिया जब मैंने कहा तुम्हें देने के लिए? मेरे ख्याल से तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा है राग, मेरा रास्ता है वैराग का और तुम्हारा रास्ता है भोग का। तुम हो भोगी, तुम जाओ वापस घर। ये लो एक सोने की मुद्रा तुम्हारे पास है, उसको संभाल के रखो और तुम वापस जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी ने उनका परित्याग किया और वो चले। और सनातन गोस्वामी पहुंचे हाजीपुर। हाजीपुर जो है एक गांव है बिहार में, सोनापुर। तो उस सोनापुर एक जिला है, तो उस जिले में ये गांव पड़ता है हाजीपुर। तो वहाँ पर प्रत्येक वर्ष वहाँ पर मेला लगता है, कार्तिक में पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है। और वहाँ पे लोग जो हैं अलग अलग इलाके से, अलग अलग देश से वो क्या लेकर आते हैं, राज्य से, अलग अलग राज्य से हाथी और घोड़े लगते हैं वहाँ पर बेचने के लिए। तो वो जगह स्थान का नाम हाजीपुर। तो हाजीपुर में सनातन गोस्वामी के ब्रदर इन लॉ को क्या कहते हैं हिंदी में, जीजा, उनके जीजा जी रहते थे जिनका नाम था श्रीकांत। तो श्रीकांत ने जब देखा सनातन गोस्वामी के हाल को कि उन्हें शायद कई दिनों से खाया नहीं है, कपड़े उनके फटे हुए हैं और इनको आगे जाना है तो ये कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया। सनातन गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ये कंबल स्वीकार कर लीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कंबल स्वीकार कर लिया और सनातन गोस्वामी फिर आगे चले। और साथ में उनके साथ उन्होंने कुछ लोग भी दिए। उन्होंने कहा रास्ता बहुत खराब है, रास्ते में कई डाकू भी आते हैं, चोर उचके भी आते हैं, तो रास्ता बहुत खराब है, ये आपको रास्ता भी दिखा देंगे। तो सनातन गोस्वामी कुछ देर के लिए तो उनके साथ गए, फिर वहां से अकेले निकल गए। और सनातन गोस्वामी महाप्रभु का स्मरण करते हुए दिन रात चलते जा रहे थे, ठीक से खाना पीना भी नहीं हो रहा था और महाप्रभु के लिए उनका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और सनातन गोस्वामी पहुंचे बनारस और वहाँ पर 2 महीने रहे। 1516 में दिसंबर और जनवरी के महीने में सनातन गोस्वामी काशी पहुँचे बनारस। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पता लगा उनको कि महाप्रभु वृंदावन से लौटे हैं और चंद्रशेखर आचार्य के घर पर रुके हैं। तो ये जब सुना महाप्रभु के बारे में तो सनातन गोस्वामी बड़े खुश हुए, गदगद हो गए और तुरंत वो चंद्रशेखर आचार्य के घर पर पहुँचे। और कहाँ बैठे थे वो, द्वार पे बैठे थे, बाहर बैठे थे। दाढ़ी उनकी बढ़ गई थी, बाल उनके बढ़ गए थे और कंबल उड़ा हुआ था, बाहर बैठे थे। बहुत सारे भक्त लोग महाप्रभु का दर्शन करने महापुर आए थे। महाप्रभु को पता चल गया कि स्वयं कृष्ण है, वो जान गए कि सनातन गोस्वामी बाहर बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो महाप्रभु ये भी जान गए कि नम्रता के कारण वो अंदर नहीं आ रहे हैं। तो महाप्रभु पिघल गए और महाप्रभु स्वयं बाहर आए और सनातन गोस्वामी को देखकर सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग में कि कितनी बार वो सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते हैं और अंत में सनातन गोस्वामी दुखी हो जाते हैं, अब बहुत हो गया। तो आप देखेंगे घटना में जैसे हम सुनाते जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो बहुत अधम हूं, नीच कुल नीच जाति है मेरी, यामनों का मैंने संग किया है, उनकी सेवा की है, आप मेरा स्पर्श ना करें। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हद हो गई तुम्हारी नम्रता की। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार खुशीपूर्वक डांटते हुए सनातन गोस्वामी का महाप्रभु ने आलिंगन किया। और इस प्रकार महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बताया कि आप जाके इनको आप स्नान करवाएं, इनका शेविंग करवाएं, हेड शेव करवाएं। तो प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं चेतन चरितामृत में इस प्रसंग के तात्पर्य में कि हम तो सब सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस तरह से महाप्रभु ने इशारा किया, सनातन गोस्वामी ने हेड शेव करवाया और इसी तरह से हम लोग भी अपने संप्रदाय में, अपनी संस्था में सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि वो हेड शेव करें, मुंडित केश मुंडित हो। और जो हेड शेव नहीं कर पा रहे हैं, बाहर रहते हैं आज की परिस्थिति के अनुसार, तो कम से कम बाल छोटे छोटे रखें, है कि नहीं? क्योंकि बाल बढ़ाना जो है ये सौंदर्य का लक्षण नहीं है, लेकिन कलयुग में यही सौंदर्य का लक्षण होगा। लावण्यम केश धारणम श्रीमद् भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में कि कलयुग में अगर लोग बाल बड़े बड़े बढ़ाएंगे तो वो सुंदरता का लक्षण होगा, है ना। लेकिन वही बाल जब आप किसी हेयर कटिंग सलून में जाते हैं और कटवाते हैं, जब वही बाल आपके सर से नीचे गिर जाते हैं तो उस बाल को हम छूते नहीं हैं। क्यों नहीं छूते हैं? वो तो बाल बड़े अच्छे थे आपके, है ना, उन्हीं बालों को आप सजा रहे थे। लेकिन वही बाल जब नीचे गिर गए तो आप क्यों नहीं उसको घर ले जाके सजाते फिर? जैसे ही शरीर का कोई भी भाग अलग हो जाता है शरीर से, वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। नाखून जब तक अच्छे होते हैं माताएं क्या करती हैं? उसको पॉलिश करती हैं, है कि नहीं। लेकिन वही नाखून जब काट देते हैं तो उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, है कि नहीं। नाखून बाल ये कोई शुभ जोन थोड़ा माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं का हम क्या करते हैं? सजावट करते हैं, उन्हीं की सजावट करते हैं, श्रृंगार करते हैं उसका। तो इसी तरह से शरीर के सारे अंग हैं जिनका दिन रात हम लोग क्या करते रहते हैं? श्रृंगार करते रहते हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी जब करके हेडशेव करके आए और उन्होंने क्या किया था, एक तपन मिश्र से उन्होंने वस्त्र भी लिया था, भिक्षा भी ली थी, और उन्होंने क्या किया, उस वस्त्र को दो भाग में बांटा और उससे बहिर्वास और डोर कोपिन पहना और महापुर के समक्ष आए और महापुर के जो समक्ष आए तो उन्होंने देखा, महापुर ने फिर से देखा उनको, महापुर कुछ बोले नहीं लेकिन उनको टेढ़ी नजर से देखा तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि कंबल देकर चेतने महापुर खुश नहीं है। इतना महंगा कंबल जो मैंने उड़ा हुआ है इसको देखकर महाप्रभु खुश नहीं है। भालो ना खाइबो, भालो ना पहरीबो, ग्रामे कथा ना सुनिबो, ग्रामे वार्ता ना कहिबो। महाप्रभु ने किसको बताया था? ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया था। तो हमारा ये जो मार्ग है ये वैराग पंथ है जिसको कहते हैं। कोई गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, सबको विरक्ति का लक्षण प्रकट करना पड़ेगा। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां उदीर्यस्तहं प्रपद्ये। तो वैराग्य विद्या सिखाई, अपनी भक्ति करके सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। तो कहने का अर्थ ये है कि वैराग का लक्षण प्रकट होना चाहिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं। अगर वैराग का और ज्ञान का लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है तो इसका मतलब भक्ति नहीं है हृदय में, सब दिखावा है, ढोंग है। इस प्रकार महाप्रभु अपने जो अनुयायी थे षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष अनुयायी थे, इस कारण से महाप्रभु इनके माध्यम से पूरे संसार को, पूरे वैष्णव समाज को शिक्षा दे रहे हैं। और सनातन गोस्वामी क्या करते थे, उन्होंने कुछ दिन तो तपन मिश्र के यहां पर प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं रोज आपके घर मधुकरी नहीं ले सकता हूं, ये ठीक नहीं मेरे लिए। तो फिर सनातन गोस्वामी अलग अलग जगह पर स्थानों में जाकर वो मधुकरी करते थे। और कंबल का क्या किया हुआ, कंबल वो गए गंगा जी के तट पर, वहां पर उन्होंने देखा कि एक भिखारी बैठा है और रजाई ओढ़े हुआ है और उसको गुदड़ी कहते हैं, गुदड़ी, तो गुदड़ी ओढ़ा हुआ था वो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास एक कंबल है और आपके पास एक गुदड़ी है, आप ऐसा करो आप एक कंबल ले लो, मुझे एक गुदड़ी दे दो। तो उन्होंने कहा, वो भिखारी कहता है, तुम खुद भी भिखारी हो, मैं भी भिखारी हूँ, तुम भी भीख मांग कर लाए हो, है ना, और भीख में लेकर आए और मुझे दे रहे हो, ये कैसा दान है, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सनातन गोस्वामी कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये कंबल ले लो, मुझे इस कंबल की आवश्यकता नहीं है, मैं इस गुदड़ी से काम चला लूंगा, इस रजाई से काम चला लूंगा। ठीक है, आपकी इच्छा ले लो। तो जब सनातन गोस्वामी इस प्रकार इस वेश में आए तो महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए, और महाप्रभु इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने वैराग का प्रदर्शन किया। तो इसलिए ये चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास का वैराग गोस्वामी बता रहे हैं, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। तो छह गोस्वामी ने दिखाया अपने कार्यकलापों के द्वारा
कि भक्ति का ये भक्ति का ये फल यही है, वैराग और ज्ञान। तो इस प्रकार वहां पर इस प्रसंग में मध्य लीला में अध्याय 20 में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी है। ये 20वां अध्याय जहाँ से महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत। तो इन शिक्षाओं को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं चैतन्य चरितामृत में, यही शिक्षा हमें प्राप्त होती हैं भक्ति रसामृत में। तो वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने काशी में दश अश्वमेध घाट में लगातार 2 महीने चैतन्य महापुरुष ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, और वो सारी शिक्षाएं सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया, जैसे कि हरि भक्ति विलास, जिस पे उन्होंने वैष्णव संस्कार, वैष्णव सदाचार के बारे में और अर्चन पद्धति के बारे में विशेष रूप से बताया है, और ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिखे महाप्रभु के आदेशानुसार। महाप्रभु ने उनको कई प्रकार के आदेश दिए, महाप्रभु ने उनको बताया अवतारों के बारे में, अंशावतारों के बारे में, और उन्होंने साधन भक्ति के बारे में और रागानुगा भक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया, और साथ में उन्होंने कुछ विशेष आदेश दिए, 4 विशेष आदेश दिए महापुरुष ने सनातन गोस्वामी। वो 4 आदेश क्या क्या हैं जो चैतन्य महापुरुष ने सनातन गोस्वामी को दिया? पहला आदेश उन्होंने दिया कि ब्रज में जितनी लीला स्थलियाँ हैं उनका पता लगाइए। आज हम ब्रज जाते हैं, जिन लीला स्थलियों का हम दर्शन कर रहे हैं, जिन मंदिरों का हम दर्शन करते हैं, ये सब किसकी देन है? ये सब षड गोस्वामियों की देन है। और सबसे पहले कौन गए थे? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी ने स्वयं 333 लीला स्थलियों का पता लगाया। लोकनाथ गोस्वामी ने, लोकनाथ गोस्वामी थे तो सही भजनानंदी, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा थी, क्योंकि वो राधा विनोद को लेकर ब्रज के अलग अलग लीला स्थलियों में जाते, लीला स्थलियों का पता लगाते। तो ये वहां रहकर लोही बाजार में रबड़ी नहीं खा रहे थे जैसे कि आज हम लोग करते हैं, क्योंकि लोही बाजार था ही नहीं सुन। वहां केवल जंगल था चारों तरफ, कोई मंदिर नहीं था। पहला मंदिर तो सनातन गोस्वामी ने बनवाया, पहला मंदिर बताते हैं कि वृंदा देवी का मंदिर बनवाया था उन्होंने, जो कि अभी किसी कारण से नजर नहीं आता है, और लेकिन हाँ, अब वृंदा देवी का मंदिर हमें बरसाना और नंदग्राम के बीच में वृंदा देवी का मंदिर है, और इस्कॉन का अपना मंदिर है ना, लेकिन वृंदा देवी का जो विग्रह है उसकी स्थापना सबसे पहले सनातन गोस्वामी ने कराई थी ब्रज में, और सबसे पहले जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो सनातन गोस्वामी के द्वारा बनवाया गया था। और दूसरा, शुद्ध भक्ति की आप स्थापना करो सिद्धांत को प्रस्तुत करके। तीसरा, आपने क्या करना है? अर्चे वगैरह की स्थापना आपने करनी है। और चौथा, आपने क्या करना है? वैष्णव सदाचार के ऊपर, वैष्णव संस्कृति, वैष्णव संस्कार के ऊपर, सदाचार के ऊपर आप ग्रंथ की रचना करो। तो सनातन गोस्वामी ने यह सब किया। और इसके अलावा आपको एक और कार्य करना होगा, जब भक्त लोग आएंगे वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए या लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए, उन सबका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके भजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको सही मार्गदर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि महापुरुष नहीं चाहते थे कि सनातन गोस्वामी तो भजन कर लें, लेकिन आने वाले लोग यही ना जान पाए कि महापुरुष की शिक्षा क्या है। तो इसलिए प्रभुपाल बार बार कहते हैं कि हमें षड गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वृंदावन में अगर रहना है, प्रभुपाल कहते थे, तो हमें षड गोस्वामी की तरह रहना पड़ेगा, है कि नहीं? भिखारी की तरह नहीं। तो इस तरह सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपके आदेश का मैं पालन करूं, तो मेरी प्रार्थना यह है कि आपके अपने चरण कमल आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण जो है सनातन गोस्वामी के सर पर रख दिया। तो सनातन गोस्वामी को पूरा आशीर्वाद मिला चैतन्य महाप्रभु से। सनातन गोस्वामी वृंदावन के लिए प्रस्थान किए और महाप्रभु का दर्शन करने के बाद, और उसी समय चैतन्य महाप्रभु नीलाचल की तरफ चल पड़े। तो महाप्रभु वास्तव में नीलाचल से वृंदावन आए थे कार्तिक के महीने में 1515 में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। उसके बाद उन्होंने सनातन गोस्वामी को काशी भेजा था जब वो वृंदावन से वापस लौटे थे माघ फाल्गुन के महीने में, यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में, जैसे हमने बताया पहले भी, दिसंबर जनवरी के महीने में 1516 में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भेजा था, और उसके दो महीने के बाद वापस वो कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी गए। तो जब ब्रज पहुंचे तो सनातन गोस्वामी सबसे पहले सुबुद्धि राय से मिले, और उसके बाद फिर लोकनाथ गोस्वामी से मिले और भूगर्भ गोस्वामी से मिले जो पहले आ चुके थे, और वहां रहकर वो भजन करते थे वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, जहाँ सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन का मंदिर बनाया है उस स्थान में, वो टीला है, इस टीला का नाम है द्वादश आदित्य टीला। 12 आदित्य वहां प्रकट हुए थे, सूर्य 12 सूर्य वहां प्रकट हुए थे, किसके लिए जानते हैं, कृष्ण के लिए। कृष्ण ने जब कालियाना का दमन किया था, बहुत देर यमुना जी में रहे तो बहुत ठंड लगी थी उनको, यमुना जी से जब बाहर निकल के आए तो वो चाहते थे थोड़ी गर्मी चाहते थे ताकि उनके ठंडक दूर हो। तो जब सूर्यदेव ने देखा और वो अपने आप को उन्होंने विस्तार किया 12 सूर्य के रूप में, इसलिए उसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं, जिससे उनकी ठंड दूर हुई, वहाँ की ठंडक जो है दूर हुई कृष्ण। तो ऐसे स्थान में सनातन गोस्वामी ने भजन कुटीर बनाया, और प्रत्येक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए मथुरा जाते और वहाँ पर मधुकरी करते, और वहीं पे आसपास जो सूखे पत्ते कुछ सब्जियाँ एकत्रित करके उन्हीं को उबाल के, हाँ, उसे बिना नमक और मसाला डाले वो क्या करते, ठाकुर जी को भोग लगाते और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते, यानी कि खाने पीने की बिल्कुल सुधबुद नहीं थी इन लोगों को। निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयो, है ना, ये बताया गया है षट गोस्वामी अष्टकम में। निद्रा और आहार के ऊपर विजय पाली थी लोगों ने, मुश्किल से 2 घंटे सोते थे, विराम करते थे 1.5 घंटे केवल 1.5 घंटे इन लोगों का विश्राम होता था, बाकी समय जो है वो ग्रंथों की रचना करते और भजन करते। कुछ समय के बाद उनको याद आया, महाप्रभु ने आदेश दिया था लीला स्थलियों का पता लगाना है, और जैसे हमने बताया कि लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ने काफी लीला स्थलियों का पता लगा लिया था, और फिर उसके बाद राधारानी की प्रेरणा से सनातन गोस्वामी ने भी काफी लीला स्थलियों का पता लगाया। 1 साल के बाद अब असंभव हो गया लगभग सनातन गोस्वामी के लिए कि महाप्रभु से वो अलग रह पाए, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए फिर से नीलाचल की तरफ गए, और इस बार वो झारखंड के जंगलों से निकले। जब वो झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे तो उनको त्वचा का रोग हो गया, शरीर में पस निकलने लगा, पूरा शरीर उनका रुग्ण हो गया, और जब उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सही रास्ते से जाऊंगा तो वहां पर क्या होगा, ब्राह्मण लोग मेरा स्पर्श करेंगे, फिर महाप्रभु भी मेरा स्पर्श करेंगे और मैं मंदिर में नहीं जा पाऊंगा। तो इस तरह से वो सीधे रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से निकलने लगे, और फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसे शरीर के को रखने का लाभ क्या है, इस देह को रखने का लाभ क्या है, अच्छा यही है कि मैं आत्महत्या कर लूं, रथ यात्रा के दौरान रथ के नीचे आकर मैं शरीर त्याग दूं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर रथ के नीचे कोई आ गया, अगर वो आत्महत्या कर रहा है तो धाम चला गया है कि नहीं। और इस तरह से दृढ़तापूर्वक सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर की तरफ नहीं गए, बल्कि हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में गए, और हरिदास ठाकुर के साथ रहने की उन्होंने रहने के लिए प्रार्थना की, तो हरिदास ठाकुर के साथ वो रहने लगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी बताया, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखने के लिए रोज आते, और रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के लिए लेकर आते हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में, और सनातन गोस्वामी वहां पर रहे, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर और आगे बढ़े फिर से उनका आलिंगन करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के कहते हैं, कृपा करके मुझे स्पर्श ना करें, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैंने यावनों की सेवा की है, और तो और मेरे शरीर से पस निकल रहा है, मैं अपराध नहीं करना चाहता हूं। लेकिन महाप्रभु ने सुना नहीं, महाप्रभु ने जबरदस्ती जो है सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और महाप्रभु ने बोला, सनातन गोस्वामी को कहा कि आप यहां हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में रहें। और सनातन गोस्वामी जब तक वहां जगन्नाथपुरी में थे कभी भी वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गए, बाहर से ही वो दर्शन करते सुदर्शन चक्र का, और सुदर्शन चक्र का दर्शन करके दूर से ही वो प्रणाम करते, क्योंकि अपने आप को वो इतना अधम समझते थे। हरदास ठाकुर अपने आप को इतना अधम समझते थे, नम्रता के कारण अपने आप को नीच मानते हुए कभी भी वो मंदिर में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। तो ये देखिए इनकी नम्रता है। तो ये है वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण। जो वास्तव में अगर भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनमें ये नम्रता के लक्षण जागृत होते हैं, सहनशीलता का लक्षण जागृत होता है, मान शून्य हो जाते हैं, सदा दूसरों को मान देते हैं। जिस तरह से वृक्ष में जब फल पकता है तो सारी शाखाएं और टहनियां झुकने लगती हैं, इसी तरह से भजन में जब कोई पकता है तो वो और ज्यादा झुक जाता है, और ज्यादा नम्र हो जाता है, वो चुनौती नहीं देता है, वो क्रोधित नहीं होता है, वो गुरु को वैष्णव को चुनौती नहीं देता है, बल्कि वो और अधिक नम्र होता है। वो यही कहता है जिस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, क्या बोल रहे हैं, जगाए मदाए होते पापिश पूरी शेरे कीट होते मुई से लोगिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं जगाए मदाए से भी ज्यादा पापी हूं, मल में जो कीड़ा है उससे भी ज्यादा मैं गिरा हुआ हूं, मल में जो कीड़ा है उससे भी ज्यादा गिरा हुआ। और मैं महाप्रभु के बारे में कुछ वर्णन कर सकूं, मैं अपने आप का योग्य समझ रहा हूं। लेकिन आजकल के कई ऐसे तथाकथित उन्नत वैष्णव हैं, वो चुनौतियां दे रहे हैं सबको, वो खुलेआम बता रहे हैं कि मैं उन्नत वैष्णव हूं, लेकिन जो वास्तव में उन्नत वैष्णव है वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो जगाए मदाए से भी ज्यादा पापी है। तो इसलिए शास्त्र चक्षु से हमें देखना है कि वास्तव में जो उन्नत वैष्णव होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसलिए वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनका आचरण। बातें लोग बड़ी बड़ी कर सकते हैं, कथाएं लोग बड़ी बड़ी सुना सकते हैं, लेकिन जब वैष्णव सदाचार की बात आती है तो तब पता चल जाता है कि वास्तव में कौन कितने पानी में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी बनारस में, तो उन्होंने वैष्णव के 26 लक्षण बताए। क्यों बताया उन्होंने, ताकि हम अपने आप को परख सकें, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या गुण हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं या नहीं, या ऐसे केवल बकवास कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हमें शास्त्रों के आधार पर देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल कथा सुन के ही हमें ये मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। इन लीलाओं से, इन महाजनों के चरित्र से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अपने जीवन में हम कैसे उतार सकें, नहीं तो क्या फायदा सुनने के बारे में, सनातन गोस्वामी के बारे में सुन के कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ जब मिलेगा जब हम भी अपने जीवन में अंश मात्र भी अगर उतार लें, इनके चरित्र को अपने जीवन में उतार लें अंश मात्र में, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी जब मिले, कि सनातन गोस्वामी अब बहुत ज़्यादा दुखी थे कि बार बार चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन करते हैं, और महाप्रभु जान गए थे कि ये आत्महत्या करना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने एक दिन कहा सनातन को, सनातन कृष्ण को आत्महत्या करके प्राप्त नहीं कर सकते, अगर आत्महत्या करके ही कृष्ण प्रेम मिलना होता तो ऐसे सैकड़ों लोग आत्महत्या करके अब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए होते, है ना। कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है भगवत भजन से, भक्ति से। और तो फिर सनातन गोस्वामी ने जब महाप्रभु से सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप जैसे मुझे नचाना चाहते हैं नचाइए, लेकिन आप जान जाएं कि मैं तो एक बहुत निकृष्ट जीव हूं, मैं बहुत पापी हूं। महाप्रभु ने कहा सनातन आपने मेरी शरण ली है, और ये जो तुम्हारा शरीर है ये मेरी संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है ये, और तुम्हारे द्वारा मुझे सदाचार के नियमों का जो पालन करना है उसकी स्थापना करनी है, और तुम ही एकमात्र निमित्त हो जिसके द्वारा मुझे कई कार्य कराने हैं। जैसे कि वृंदावन बहुत प्रिय है मुझे और वृंदावन में जो लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं, तुम्हारे माध्यम से उन लीला स्थलियों का मैं पता लगाना चाहता हूं। मुझे तो अपनी मां की आज्ञा के कारण, शची माता ने मुझे आज्ञा दी है जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, इसलिए मैं स्वयं ये कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये कार्य करो। इसका एक कारण यह भी था कि महाप्रभु अधिकांश जब भी वो लीला का वर्णन करते या सुनते तो वो भाव की स्थिति में आ जाते, महाभाव की स्थिति, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाते, जगन्नाथ जी का नाम भी पूरा उच्चारण नहीं कर पाते। तो इसलिए महाप्रभु ने ये शक्ति दी अपने गुह्यतम पार्षदों को कि जो मैं करना चाहता हूं वो आप करो। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हुए हम ये बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम, है कि नहीं। तो महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा किया इन षड गोस्वामी ने, श्रील रूप गोस्वामी ने, श्री सनातन गोस्वामी ने। श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा, श्री सनातन गोस्वामी की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। तो सनातन गोस्वामी बहुत ज्यादा अपने आप को कोस रहे थे, अपने आप को बहुत अधम मान रहे थे। और फिर रथ यात्रा का समय आ गया, महाप्रभु ने फिर अन्य पार्षदों से, अन्य परिकरों से उनकी जान पहचान कराई। एक बार महाप्रभु सनातन गोस्वामी की परीक्षा लेना चाहते थे ज्येष्ठ के मास में, तो उन्होंने उनको टोटा गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए बुलाया, भिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी प्रसाद के लिए बुलाया। तो सनातन गोस्वामी बड़े खुश हुए, सनातन गोस्वामी कभी उस तरफ जाते नहीं थे, है ना। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा महाप्रभु ने मुझे बुलाया है, अब मैं जाऊं कैसे। तो सनातन गोस्वामी समुद्र के तट से गुजरते हुए गए, रेती की वे के ऊपर चलते हुए, गर्मी के मौसम में रेती इतनी गर्म हो जाती है अगर पांव रखेंगे तो उसी समय पांव जल जाएगा। लेकिन सनातन गोस्वामी का प्रेम इतना अधिक था महाप्रभु के लिए, वो इतने भावावेश में थे, वो ये भी नहीं ध्यान दे रहे थे कि उनका पांव जल रहा है, और सीधे बड़े तेजी से वो भागे जा रहे थे महाप्रभु की ओर, महाप्रभु से मिलने के लिए। तो महाप्रभु के पास जब पहुंचे तो महाप्रभु ने देखा कि उनके पांव पूरे जल गए हैं। तो महाप्रभु ने पूछा कि आप किस रास्ते से आए, उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के किनारे से आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सिंह द्वार की तरफ से जाऊं और मेरे शरीर के स्पर्श के कारण वो ब्राह्मण सब दूषित हो जाए। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए सुनकर, महाप्रभु ने कहा कि सनातन तुम्हारे पास पूरी शक्ति है, इस ब्रह्मांड को तुम पवित्र कर सकते हो अपने स्पर्श के द्वारा, है ना, अपने दृष्टि के द्वारा तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम अकेले ही इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। इसलिए हालांकि तुम्हारे लिए नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो वैष्णव होते हैं वो मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि तुम अगर मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ये कहते हैं, फिर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी फिर से अपने आप को कोसने लगे कि हो क्या रहा है, बार बार महाप्रभु मेरा आलिंगन करते हैं। तो जगदानंद पंडित जो थे वो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद एक और थे, जानते हैं जगदानंद पंडित, जो कि सत्य भामा के अवतार बताए जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने एक बार कहा, पंडित जी मैं एक बड़ी समस्या में हूं, आप मेरी सहायता करें, आप तो महाप्रभु के बड़े निकट हैं, महाप्रभु बार बार मेरा आलिंगन करते हैं, मेरा शरीर देखो पस से भरा हुआ है, रुग्ण अवस्था में हूं, मैंने यामरों की सेवा की है और मैं तो आत्महत्या करना चाहता था लेकिन महाप्रभु ने मुझे रोका, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और तो जगदानंद पंडित ने भी सोचा, हाँ ये बात तो सही है कि अगर आप उनका आलिंगन कर रहे हैं आपको भी कष्ट हो रहा है और महाप्रभु के शरीर में इतना अगर पस लगेगा, आपके शरीर का स्पर्श होगा तो उनके शरीर में भी जो है वो भी दुखी होंगे। तो इस प्रकार वो कहने लगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, महाप्रभु से जब दोबारा मिले सनातन गोस्वामी तो तो उन्होंने उनको सुझाव दिया जगदानंद पंडित महाप्रभु को कि अच्छा यही है कि आप रथ यात्रा के उपरांत आप चले जाएं, वापस वृंदावन चले जाएं, क्योंकि महाप्रभु ने वैसे भी आपको जिम्मेदारी दी है, तो आप रथ यात्रा के बाद अच्छा होगा कि आप वृंदावन चले जाएं। तो अगले दिन जब महाप्रभु से मिले हरिदास ठाकुर की कुटिया में, तो महाप्रभु ने फिर से उनका आलिंगन किया। तो सनातन गोस्वामी ने हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं कि प्रत्येक दिन आप बार बार मेरा आलिंगन करते हैं, आप देखिए मेरे शरीर की क्या हालत है, और इससे मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं ये अपराध बार बार नहीं करना चाहता हूं, और मुझे आप आज्ञा दें कि जल्द ही मैं वृंदावन जा सकूं। मुझे तो जगदानंद पंडित ने भी मुझे ये सुझाव दिया है। तो महाप्रभु ने जब सुना कि जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को सुझाव दिया है, तो महाप्रभु चिल्लाए, जग्गा, उसकी ये हिम्मत कि तुम्हें सुझाव दे सके, वो होता कौन है, तुम मेरे भी गुरु हो, उसे कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हें वो आदेश दे। तो महाप्रभु फिर इस प्रकार से क्रोधित हुए, तो सनातन गोस्वामी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा महाप्रभु से, महाप्रभु आज तक तो आपने कभी मेरे ऊपर ये क्रोध प्रकट नहीं किया, आप तो हमेशा मुझसे प्रेम से बात करते हैं, वास्तव में आपका देखिए कितना प्रेम है जगदानंद पंडित के लिए कि आप उनको डांटते हैं, मुझे तो आपने आज तक कुछ कहा ही नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं, सनातन ऐसा मत कहो, तुम मुझे ज्यादा प्रिय हो जगदानंद पंडित से, मैंने उसको इसलिए डांटा कि उसने मर्यादा का भंग किया, उसने शिष्टाचार का भंग किया, तुम हर तरीके से उनसे वरिष्ठ हो, हर तरीके से तुम उन्नत हो। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को बहुत चाहते थे। महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में तुम्हारा ये देह जो है, ये मत सोचो कि प्राकृत है, ये अप्राकृत शरीर है तुम्हारा, तुम्हारा ये शरीर चिन्मय है। तो इस तरह कहते हुए महाप्रभु ने फिर से सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। और इस बार जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया, उनका सारा रोग त्वचा का रोग दूर हो गया। बोलो गौरांग महाप्रभु की। और उनका शरीर, सनातन गोस्वामी का शरीर स्वर्ण जैसा हो गया, स्वर्ण कांति का हो गया। तो इस प्रकार महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप होली तक वहां पर रहें, और उसके बाद फिर आप वृंदावन चले जाना, और तब तक महाप्रभु सनातन गोस्वामी आपस में कृष्ण कथा करते, चर्चा करते। सनातन गोस्वामी वृंदावन आए वापस होली के बाद, और उसी तरह पहले की तरह आदित्य टीला में वहां पर भजन करते यमुना जी के तट पर, और लीला स्थलियों का पता लगाते। और ये बताया, जैसे हमने बताया कि सनातन गोस्वामी ने सबसे पहले वृंदा देवी का विग्रह जो है प्राप्त किया था, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। तो एक दिन सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते करते मथुरा गए, क्योंकि वृंदावन में तो केवल वन ही थे, वहां पर कोई लोग रहते नहीं थे, जंगल था पूरा, जंगली जानवर वहां पर रहते थे, और ये गोस्वामी लोग रहते थे, बस पेड़ के नीचे रहते थे, जहां रह गए वही भजन कुटीर हो गया, और लकड़ियां जलाकर जो उससे रोशनी निकलती उसी से वो ग्रंथों की रचना करते। तो मधुकरी करने सनातन गोस्वामी पहुंचे कहां पर, मथुरा पहुंचे, और वहां पे एक ब्राह्मण के घर गए, उस ब्राह्मण का नाम था दामोदर चौबे। और उस घर में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, बहुत सुंदर विग्रह देखा मदन गोपाल जी का। मदन गोपाल जी का विग्रह देखकर वो इतने आकर्षित हुए, इतने प्रभावित हुए, उनके हृदय में इच्छा जागृत हुई कि कब मैं मदन गोपाल जी की सेवा कर पाऊंगा। सनातन गोस्वामी के हृदय में इच्छा जागृत हो गई। लेकिन जो दामोदर चौबे की जो पत्नी थी, वो बहुत बड़ी भक्त थी, वो वात्सल्य रस में थी, और वात्सल्य रस में वो मदन गोपाल जी की सेवा करती थी। उनका एक लड़का था सदन, तो गोदी में रखती थी दोनों को, एक तरफ मदन को और एक तरफ सदन को, और दोनों को एक साथ खिलाती थी, दोनों को एक साथ नहलाती थी, और दोनों का दांत भी साफ करती थी। तो जब सनातन गोस्वामी ने एक दिन देखा कि जिस तरह से सदन की सेवा कर रही है उसी तरह से मदन की सेवा हो रही है, तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मुझे इनको सुझाव देना चाहिए, समझाना चाहिए, और साथ में सनातन गोस्वामी की परीक्षा भी लेना चाहते थे। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि मेरा सुझाव ये है, ये मदन गोपाल जी आपके इष्ट हैं, इनकी सेवा शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, मर्यादा से, नियमों का पालन करते हुए। ये आपका लड़का थोड़ा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, अगर आप कहते हो तो मैं इसी तरह से सेवा करूंगा। तो उन्होंने फिर वैसी सेवा करना शुरू कर दिया। तो फिर मदन गोपाल जी जो है उनके सपने में आए। मदन गोपाल जी कहते हैं अब कब से तुम भेदभाव करने लग गई, पहले तो सदन के साथ मुझे खिलाती थी, अब मुझे अलग बिठा देती हो, अलग खड़ा कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सदन के साथ ही खाना चाहता हूं, पहले जैसे खिलाती थी वैसे ही मुझे खिलाइए। तो सनातन गोस्वामी फिर एक दिन मधुकरीफ करते हुए फिर से पहुंचे तो सनातन गोस्वामी से बोले, वो बोलती हैं कि जैसे आपने कहा मैंने वैसे किया, लेकिन इसने मुझे सपने में आके बताया कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब ये बताया, उन्होंने ये हादसा बताया सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी हैरान रह गए, वास्तव में ये तो बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं, वात्सल्य रस में मदन गोपाल जी की सेवा कर रही हैं। और सनातन गोस्वामी का प्रेम मदन गोपाल जी के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मदन गोपाल जी सपने में आए। जब उनके सपने में आए तो मदन गोपाल जी ने कहा कि अब आप वृद्ध हो चुकी हैं, कब तक आप सेवा करती रहेंगी मेरे, मैं भी तो बड़ा हो चुका हूं, अब ऐसा करो आप मुझे वो जो बाबा आता ना उसके हाथ सौंप दो, वो सेवा कर लेगा अच्छी तरह से। तो एक दिन सनातन को जो गोस्वामी जब आए तो उन्होंने बताया कि बाबा अभी ये लड़का बड़ा हो गया है और मैं भी अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक सेवा कर पाऊंगी, आप अच्छी सेवा कर सकते हो, आप यहाँ आते भी हो उनके दर्शन करने के लिए, मैं चाहती हूँ कि आप इनकी सेवा स्वीकार करो। तो सनातन गोस्वामी इतने खुश हो गए, हाँ इतने आनंदित हो गए कि मदन गोपाल जी को वहाँ से वो लेकर चले गए। और मदन गोपाल जी को लेकर गए और उन्होंने उसकी स्थापना की, आदित्य टीला के पास ही भजन कुटीर उन्होंने बनवाया, भजन कुटीर बनाया और वहां मदन गोपाल जी की सेवा करते। लेकिन मदन गोपाल जी की सेवा के लिए उनको फिर से मधुकरी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। वो क्या करते, कुछ आटा लेके आते, उसकी बाटी बनाते बिना नमक के और बिना मसाले के, उसमें आग में सेक कर वो मदन गोपाल जी को भोग लगाते। अब मदन गोपाल जी इसको स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन कब तक ऐसा स्वीकार करते, उसमें ना नमक था ना मसाला था। तो मदन गोपाल जी ने एक दिन बताया उनको, उन्हें कहा कि तुम मुझे ये जो बाटी खिलाते हो ये तो मेरे गले से उतरता भी नहीं है, कम से कम नमक तो डाल दिया करो इसमें। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं सुनो आज तो तुम कुछ मुझसे बाजरा मांग रहे हो, नमक मांग रहे हो, कल तुम मुझसे छप्पन वो मांगोगे, है ना, और मैं खुद भिखारी हूं, मैं कहां से लाऊंगा ये सब, अभी जो मैं दे रहा हूं उसी से काम चलाओ। तो ये वास्तव में मानसी सेवा होती है, जब कोई राग मार्ग पहुंच जाता है तो मानसी सेवा के द्वारा ही वो सारा कार्य कर देता है। और जब राग मार की स्थिति में कोई पहुंच जाता है तो फिर अर्चे वगैरह की जो सेवा है उस सेवा से वो कहीं आगे बढ़ जाता है। वो तो ये जब तभी हो सकता है जब कोई सिद्ध देह प्राप्त कर लेता है, सिद्ध देह जब कोई प्राप्त कर लेता है तो अंतरंग रूप से वो भाव सेवा कर पाता है, भाव भक्ति के धरातल पर अपने सिद्ध देह से वो मानसिक सेवा कर पाता है, जिस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी किया। उनका एक दिन पेट खराब हो गया और जब पेट खराब हो गया तो वैद्य जी देखने के लिए आए, तो वैद्य जी ने कहा, विट्ठलनाथ लेके आए थे उनको, वैद्य ने कहा कि इन्होंने खीर खा ली बहुत सारी इसलिए इनका पेट खराब है। तो जब वैद्य जी चले गए उन्होंने कहा कि आपने तो खीर खाया नहीं, मैं तो देखा नहीं आपको कभी खाते हुए, आप तो केवल छाछ पीते हैं वो भी कई दो दिन में एक बार। वो भी 200 ग्राम से ज्यादा लेते नहीं आप, तो कहा नहीं नहीं मैंने राधारानी को भोग लगाया था खीर का, मानसी सेवा की थी मैंने, और मैंने फिर ज्यादा ले लिया प्रसाद, इसलिए पेट खराब हो गया। तो ये इनकी हम नकल नहीं कर सकते, हम जैसे भोग लगा रहे हैं अभी वैसे ही नकल, वैसे ही भोग लगाना है कि नहीं, मानसी सेवा नहीं करनी हमें, क्योंकि अभी हम लोग वैदिक साधना कर रहे हैं, राग मार की साधना नहीं कर रहे। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी मदन गोपाल जी की निरंतर सेवा करते। एक दिन एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था, उस व्यापारी का नाम था रामदास कपूर, वो जा रहा था आगरा, नमक का व्यापारी था, उसकी नाव अटक गई वहां पर यमुना जी के तट पे, जहां पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी, और वो सोचने लगा क्या करूं, अगर यही नाव खड़ी रहेगी तो रात बीत जाएगी और रात्रि को मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, और समय पर नहीं पहुंचा तो मुझे नुकसान होगा, लगता है इस भजन कुटीर में कोई संत रहते हैं, बाबा रहते हैं, उनसे मैं जाके बात करता हूं। तो उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी से कि मेरी नाव अटक गई है, मैं आगरा जा रहा था, नाव अटक गई, अब नाव आगे बढ़ नहीं रही है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए ना। बोलते हैं सनातन गोस्वामी ने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा कि मदन गोपाल जी ने, मदन गोपाल जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आप चिंता मत करो, वो जल्दी आपके ऊपर कृपा करें। और रामदास जो सनातन गोस्वामी का जिनको आशीर्वाद मिल गया था, तो रामदास ने उनको ये भी कहा कि अगर व्यापार में मैं सफल हुआ, मुझे मुनाफा हुआ, तो मैं मदन गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा यहाँ पर, यहीं पर यमुना जी के तट पर। और आगरा गए, बहुत उनको मुनाफा हुआ, बहुत उन्होंने धन कमाया, और वापस आकर उन्होंने फिर मदन गोपाल जी का मंदिर बनवाया। जो मदन गोपाल जी का मंदिर है, ये मदन मोहन जी का मंदिर, ये इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, बहुत सुंदर मंदिर। वास्तव में जो मदन गोपाल जी का मंदिर है, ये प्राप्त हुआ था अद्वैत आचार्य को, वहाँ पर अद्वैत वट है मदन मोहन जी के मंदिर के पीछे, और अद्वैत आचार्य ने जब ये मदन गोपाल जी का विग्रह प्राप्त किया, तो उन्होंने मथुरा में जो ब्राह्मण थे दामोदर चौबे, उनको दे दिया था, और उनसे फिर श्रील सनातन गोस्वामी को ये मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हुआ, और यही मदन गोपाल जी बाद में मदन मोहन जी के नाम से जाने गए। अभी मदन मोहन जी है वहाँ पर करौली में, है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे सवाई जय सिंह थे, उनकी बेटी का विवाह होना था करौली के एक राजा से, तो उन्होंने पूछा अपनी बेटी से कि आपको क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ, पूछो जो भी आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मदन मोहन चाहती हूँ। तो मदन मोहन जी उस समय जयपुर में थे, जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था वृंदावन में, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, ऐसे कई मंदिरों को तोड़ा था, तो उस समय कई ब्राह्मणों ने क्या किया था, इन विग्रहों को जयपुर पहुंचा दिया था। लेकिन बाद में मदन मोहन जी जयपुर से कहाँ चले गए, करौली चले गए, जब राजा की बेटी का विवाह हुआ। तो इस तरह से मदन मोहन जी के विग्रह की स्थापना हुई, ये मुसलमानों के आने से पहले की घटना है। जो महाराज प्रताप रुद्र के जो पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना, उन्होंने दो विग्रह भेजे थे, एक विग्रह उन्होंने भेजा था मदन गोपाल जी के लिए, और एक विग्रह उन्होंने भेजा था गोविंद देव जी के लिए, और राधारानी के विग्रह भेजे थे तो उन्होंने दो। लेकिन हुआ क्या, मदन गोपाल जी के जो पुजारी थे उनको सपना आया, और सपने में क्या बताया गया, ये जो दो विग्रह आ रहे हैं उसमें जो छोटा विग्रह है वो राधारानी है, और जो बड़े विग्रह हैं वो ललिता जी हैं, तो उनको यहीं पर स्थापित करो। तो गोविंद देव जी तक फिर वो पहुंचा नहीं, वो विग्रह फिर गोविंद देव जी के लिए विग्रह बाद में आए, वो उसकी अलग घटना है। तो इसलिए ये उसके बाद फिर मदन मोहन जी के साथ फिर राधारानी की सेवा भी प्रारंभ हुई। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जो है वो, हालांकि मंदिर तो बन गया, लेकिन हमने जैसे बताया कि जितने भी गोस्वामी थे वो मंदिरों का निर्माण तो करवाते थे, लेकिन मंदिरों के अंदर नहीं रहते थे वो, उनके लिए कोई बहुत सुविधायुक्त कमरे नहीं थे, वो तो वहीं पर जाके भजन कुटीर में जाके भजन करते थे, और उन्होंने कुछ पुजारियों को ब्राह्मणों को लगा दिया था उनकी सेवा में, और खुद वो महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए द्वादश पदों में भटकते रहते थे। तो यहां पर एक घटना और बताई गई है कि एक बार की घटना है कि सनातन गोस्वामी जब ब्रज में भ्रमण करते थे, कभी वो गोकुल में रहते, कभी वो नंदग्राम में रहते। हमने देखा कि मानसी गंगा में वहाँ पर भी सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, और अगर आप गोकुल जाएंगे तो वहाँ पर तो 10 या 15 फुट नीचे, वहाँ पर नीचे जाकर जो है सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर दिखता है ना, बिल्कुल ज़मीन के नीचे है, सीढ़ियाँ भी हैं, आप नीचे जाकर देख भी सकते हैं। तो वहाँ पर भजन कुटीर थी। लेकिन मदन गोपाल जी को हालांकि उन्होंने सेवा में लगा दिया, एक भक्त है कृष्णदास ब्रह्मचारी, उनको सनातन गोस्वामी ने उनकी सेवा में लगाया था, तो वो सेवा कर रहे थे। लेकिन मदन मोहन जी वो कैसे अपने भक्त से अलग रहते, जितना भक्त भगवान से विरह महसूस करता है उतना ही भी कृष्ण भी भक्तों से विरह महसूस करते हैं। ऐसा नहीं केवल भक्ति विरह महसूस करते हैं कृष्ण से, भगवान भी विरह महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि ये कहाँ चले गए सनातन गोस्वामी मुझे छोड़कर, है ना। तो एक दिन जब लगातार 2-3 दिन के लिए सनातन गोस्वामी भजन में मग्न थे और वो मधुकरी भी नहीं कर रहे थे, तो एक ग्वाला आया लोटा लेकर, जिस तरह से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के पास आया था उसी तरह से सनातन गोस्वामी के पास भी आया एक ग्वाला, और उसके घुंघराले बाल थे, लाल रंग की पगड़ी उसने पहनी हुई थी, बहुत सुंदर दिखता था वो। और सनातन गोस्वामी ने पूछा कि लाला तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, कहाँ से लेकर आए हो? तो उसने कहा कि हम चार भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। और उसके बाद फिर उस ग्वाले ने दूध दिया, सनातन गोस्वामी ने उसको स्वीकार किया, और जैसे ही स्वीकार किया तो उनको लगा कि ये तो प्राकृत जगत का नहीं लगता है, ये तो अप्राकृत वस्तु लगता है। तो सनातन गोस्वामी ने जैसे ही दूध पिया तो सामने क्या देखा उन्होंने, उस लड़के में किसको देखा, मदन गोपाल जी को देखा, कि मदन गोपाल जी स्वयं आए हैं ग्वाले के रूप में उनको दूध देने के लिए। तो इस प्रकार ये घटना बताई गई है। जगदानंद पंडित की बड़ी इच्छा हुई थी वृंदावन जाने की, महाप्रभु पहले उनको मना कर रहे थे, फिर उन्होंने जब कहा कि नहीं जाना ही है तो महाप्रभु, ठीक है आप जाओ, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना, वहां जाकर आप सनातन गोस्वामी का आश्रय लेना, और दूसरा आप गिरिराज जी के और पाँव मत रखना, तीसरा ब्रजवासियों से ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाना, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे ब्रज के भाव। फिर जगदानंद पंडित कौन है, सत्य भामा है, वो द्वारका के भाव में है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहो, वहीं सुरक्षित रहोगे। तो सनातन गोस्वामी के पास आए, और जब सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर में पहुंचे तो बड़े खुश हुए। क्या देखकर खुश हुए, एक दिन जब उन्होंने सनातन गोस्वामी को प्रसाद के लिए बुलाया तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी ने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई। तो जगदानंद पंडित ने पूछा, पहले तो जगदानंद पंडित बड़े खुश हुए, उनको लगा शायद ये महाप्रभु की प्रसादी है और उसी को धारण किया है। तो उन्होंने पूछा कि आपको ये किसने दिया, सनातन गोस्वामी से पूछा उन्होंने। तो सनातन गोस्वामी ने कहा एक मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी आए थे, उन्होंने मुझे दिया। तो सनातन गोस्वामी से जब सुना जगदानंद पंडित ने, वो इतने गुस्से हुए, उन्होंने एक चावल जो बर्तन उठा के जिसमें चावल था वो उठा के सीधा वो सनातन गोस्वामी के सर पर मारने वाले थे। तो लेकिन सनातन गोस्वामी बिल्कुल घबराए नहीं, सनातन गोस्वामी फिर भी मुस्कुराते रहे, और सनातन गोस्वामी को जो देखा वो बिल्कुल घबरा ही नहीं रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी ये है आपकी चैतन्य निष्ठा, मैं तो आपका आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं ये देखना चाहता था आपका कितना प्रेम है महाप्रभु, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो इस प्रकार फिर सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित के साथ बैठ के फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। एक बार की बात है, रूप गोस्वामी वो भजन कर रहे थे अपनी कुटिया में कदम टेर में नंद गांव के पास, और इतने साल उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ लेकिन राधा रानी के मुझे दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे, और इसके कारण वो विरह महसूस कर रहे थे, और उन्होंने मधुकरी में जाना भी बंद कर दिया। श्रील रूप गोस्वामी ने। और तीसरे दिन उनको सूचना मिली कि सनातन गोस्वामी आने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, तो उससे जा अगर मुझे दूध और चावल मिल जाए तो मैं उनके लिए प्रसाद बना सकता हूँ, खीर का प्रसाद। तो ऐसा सोच ही रहे थे, एक छोटी सी लड़की आई और वो आगे कहती है रूप गोस्वामी को कि आपके लिए मैं दूध लेकर आई हूँ, चावल लेकर आई हूँ, चीनी लेकर आई हूँ, तो आप क्या करिए खीर बना लीजिए, खीर बना लीजिए और इसी का आप प्रसाद भी लीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने जब वो खीर प्रसाद स्वीकार किया जो राधारानी के द्वारा दिया गया था, वास्तव में हुआ क्या, जब उन्होंने कहा कि आप ये दे तो रही हैं लेकिन मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं बना सकूं, तो फिर उन्होंने खुद ही बनाया खीर और खीर बना के वो चले गए। और सनातन गोस्वामी ने जब खीर प्रसाद लिया तो वो हैरान हो गए कि ये तो इस जगत का नहीं लगता है, जैसे अमृत केली है, रेमुणा का जो अमृत केली खीर है, जब खाएंगे आप तो आपको लगेगा कि ये तो इस जगत का नहीं है, इतना स्वादिष्ट होता है जैसे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो जब उन्होंने लिया, ये प्रसाद ग्रहण किया, तो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि कैसे प्रसाद आपको मिला, खीर प्रसाद मिला। तो सनातन गोस्वामी ने जब सुना रूप गोस्वामी से उस खीर प्रसाद के बारे में, तो सनातन गोस्वामी समझ गए। उन्होंने कहा हम ब्रज में यहाँ पर रह रहे हैं राधारानी की सेवा करने के लिए, राधारानी से सेवा लेने के लिए नहीं। तो स्वयं राधारानी आए थी वहाँ पर, खीर प्रसाद बना के उनको दिया था। एक घटना आती है, इसलिए रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ है चाटू पुष्पांजलि, उस ग्रंथ में एक कथा लिखी है। उसमें क्या लिखा, पहले श्लोक में उन्होंने लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने कि राधारानी की जो वेणी है उसकी तुलना श्री रूप गोस्वामी ने एक सांप से की, सर्प से की, नगीना शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि मतलब सनातन गोस्वामी ने जब ये सुना, ये देखा उन्होंने कि उन्होंने इस प्रकार की रचना की है, तो उन्होंने क्या सोचा, ये तो अमृत को तुलना इन्होंने जहर से कर दी है, क्योंकि राधारानी का जो शरीर है वो जो सच्चिदानंद है, वो महाभाव से बना हुआ है, तो उनकी वेणी की तुलना सर्प से कैसे की जा सकती है। तो इस प्रकार वो सोच ही रहे थे और वापस अपने भजन कुटीर में पहुंचे मधुकरी करने के बाद, और उन्होंने एक कुंड के पास देखा, उस कुंड का नाम था राधा सर कुंड के पास देखा, तो उन्होंने क्या देखा, उनको लीला स्फूर्ति हुई, जैसे वो भजन करने लगे लीला स्फूर्ति हुई। उन्होंने क्या देखा कि सामने झूले में झूल रही हैं राधारानी, झूल रही हैं और सखियां जो है साथ में झूला रही हैं उनको, और पीछे उनकी वेणी हिल रही है। तो सनातन गोस्वामी ने जब देखा तो वो चिल्लाए जोर से, बोलते लाली सांप सांप, तुम्हारे पीछे सांप है, बच के रहो, ये सांप कहीं डस लेगा तुम्हें। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने बोला तो फिर वो लीला स्फूर्ति बंद हो गई, अदृश्य हो गया, उजल हो गया वो दर्शन। तब सनातन गोस्वामी को समझ में आया कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कि वास्तव में तो वेणी तो सर्प के जैसे लग रही। तो इस तरह इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है, और इसका वर्णन हमें मिलता है भक्ति रत्नाकर में, नरहरि सरकार ठाकुर ने ये वर्णन दिया है। तो फिर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बताया कि विशेष कृपा है आपके ऊपर श्रीमती राधारानी की, और आपके ग्रंथ जो है आप लिख रहे हैं इससे पता चलता है कि जब भी आप लिखते हैं उस समय आप देखते हुए लिखते हैं, आप कल्पना से नहीं लिख रहे हैं, आप वो लीला का दर्शन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। जैसे प्रभुपाल ने क्या बोला, प्रभुपाल ने कहा ये ग्रंथ मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने नहीं लिखे ये ग्रंथ, ये तो स्वयं कृष्ण लिखे हैं। तो ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव में है, प्रभुपाल जी के ग्रंथ जो है, हालांकि प्रभुपाल ने लिखे अपने डिक्टाफोन से, उन्होंने डिक्टेट किया, लेकिन वास्तव में लिखवाया किसने, कृष्ण लिखवाया। अगर आप देखेंगे प्रभुपाल जी के डिक्टाफोन रिकॉर्डिंग देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद अनुवाद किए जा रहे हैं। वो ये नहीं कि हाँ ये लाइन मैंने गलत ट्रांसलेट कर दिया, दोबारा करना है या तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है, प्रभुपाद अनुवाद किए जा रहे हैं, सिर्फ प्रभुपाद शब्द चेक करते थे, पॉज देके पीछे जाते थे, रिवाइंड करके चेक करते थे कि मैंने ठीक बोला है कि नहीं बोला, बस इतना ही देखते थे प्रभुपाद, फिर आगे बढ़ते जाते थे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि बीबीटी के साथ मेरा क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो पब्लिश किए जा रहे हैं और मैं किताबें छापते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, अब देखना यह है कि कौन आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद बड़ी तेजी से लिखते थे। ये जो चेतन चरता में थे प्रभुपाद ने 18 महीने में पूरा किया, इसका अनुवाद 18 महीने में पूरा कर दिया प्रभुपाद ने। कोई कर सकता है, साधारण व्यक्ति है, जब तक महाप्रभु की कृपा ना हो, है ना। इसलिए प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में बात चल रही है कि एक शिष्य जो है बैठा है और एक रिपोर्टर आया है, उसने कहा कि मोसेस गए थे पहाड़ी में और पहाड़ी में जाकर उन्होंने भगवान की आवाज़ सुनी उन्होंने, और इस तरह से उनको 10 शिक्षाएं प्राप्त हुई, 10 कमांडमेंट्स उनको मिला, भगवान से आदेश मिला। तो इसी तरह से क्या आपके गुरु महाराज को प्रेरणा मिली, जिस प्रेरणा से उन्होंने इतने सारे किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं? तो फिर वो शिष्य बोला, हाँ मेरे गुरु महाराज को स्वयं परम भगवान कृष्ण से प्रेरणा मिली है। तो प्रभुपाद ने कहा ये गलत बोल रहा है, प्रभुपाद ने कहा रिपोर्टर से, ये शिष्य गलत बोल रहा है, मुझे कृष्ण से प्रेरणा नहीं मिली, मुझे कृष्ण लिखवाया है ये सारा कुछ। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा पर्सनली डिक्टेटेड मी टू राइट दिस बुक्स, प्रेरणा नहीं मिली मुझे। तो ये इससे साफ पता चलता है कि प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, यानी कि उसको खुश करने के लिए या उस अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं, वास्तविक सच्चाई है। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर लोग भक्त बनते हैं। ऐसा कभी हुआ था क्या कि कोई किताब पढ़ के भक्त बन रहा था? लेकिन प्रभुपाद जी ग्रंथों का कमाल है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे आई एम लाइक द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। प्रभुपाद कहते कि वृंदावन के 6 गोस्वामी की तरह हूं मैं। ये गोस्वामी लोग हर दिन हर पेड़ के नीचे रहते थे और ग्रंथों की रचना करते थे। मैं भी अलग अलग मंदिरों में जाकर रहता हूँ। कितना रहता हूँ? 2 दिन रहता हूँ, 3 दिन रहता हूँ एक मंदिर में, और वहां जाके क्या करता हूँ? मैं भी इन गोस्वामी की तरह ग्रंथों की रचना करता हूँ। इसलिए प्रभुपाद कहते थे आई एम लाइक द 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन, क्योंकि ये मंदिर जो मैंने बनाए हैं इसमें तो मेरे शिष्य रह रहे हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? तो इस तरह प्रभुपाद इन बातों से उत्साहित करते हैं, प्रेरणा बढ़ाते हैं। सनातन गोस्वामी मानसी गंगा के पास उनका भजन कुटीर था, और एक घटना है जिसमें हम जानते हैं कि एक शिवजी के भक्त है जिनका नाम था जीवन ठाकुर, जो कि काशी में रहते थे और शिवजी की पूजा करते थे, और उन्होंने शिवजी से वरदान मांगा। एक बार शिवजी ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि मुझे आप कोई अनमोल धन दीजिए, सबसे कीमती वस्तु दीजिए। उन्होंने कहा सबसे बहुमूल्य अगर वस्तु चाहिए तो उसके लिए तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा। वहां मानसी गंगा के निकट एक बाबा है, सनातन गोस्वामी उनका नाम है, उनसे मिलो और उनसे आपको ये अनमोल धन प्राप्त होगा। तो पहुंचे वहां पर, सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आप के पास कोई अगर अनमोल धन है, मुझे पता चला है महादेव ने मुझे प्रेरणा दी है, आपके पास अगर अनमोल धन है कोई तो मुझे आप दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। वो पारस पत्थर पड़ा हुआ है, वो पारस पत्थर कहाँ डाल के रखा था? कूड़ेदान में। तो लेकर चला गया बड़ा खुश होते हुए, और जब लेके गया और रास्ते में जब लेके जा रहा था तो फिर सोचने लगा, अगर ये इतनी कीमती चीज है तो उन्होंने इसको कूड़ेदान में क्यों डाल के रखा? इसका मतलब ये कीमती चीज नहीं है सबसे ज्यादा, इससे भी अधिक कीमती चीज उनके पास होगी। तो फिर वो पहुंचा वापस सनातन गोस्वामी के पास, और सनातन गोस्वामी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपके पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज है कोई, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप बताइए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा इससे अधिक कीमती चीज तो केवल एक है, और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में इससे ज्यादा कीमती चीज कोई है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस तरह से जीवन ठाकुर ने सनातन गोस्वामी की शरण ली और सनातन गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। और यह भी बताया जाता है कि सनातन गोस्वामी से शायद अकबर भी मिलने आए थे, वृंदावन में सनातन गोस्वामी से और अन्य गोस्वामी से भी मिले थे। जी गोस्वामी ने भी लिखा है एक जगह पर कि अकबर के राज्य में सारे वैष्णव लोग बड़े खुश हैं। लेकिन कई बार ये घटना बताई जाती है कि सनातन गोस्वामी ने अकबर को चिन्मय वृंदावन का दर्शन करवाया, जो कि सच नहीं है घटना ये। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अकबर इस दर्शन इस वृंदावन का दिव्य दर्शन करने के बाद उनका जीवन बदल गया होता। लेकिन वो जैसे वृंदावन से वापस जब आगरा पहुंचे तो वैसे का वैसे ही, कोई उनमें परिवर्तन नहीं आया, विशेष कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने मंदिर बनाने में काफ़ी सहायता की वृंदावन में, और वैष्णों की वो बहुत सेवा करते थे, ये जरूर की सच बात है। तो 1533 में महाप्रभु के तिरुभाव के बाद कई भक्त लोग जो हैं बंगाल और उड़ीसा से निकल के वृंदावन में रहने लगे। सनातन गोस्वामी अब ब्रज की परिक्रमा भी करते थे, प्रत्येक वर्ष 84 कोस की ब्रज मंडल की परिक्रमा करते थे और कई वैष्णों के साथ कई गांवों में जाते थे, कई घरों में जाते थे, कई परिवारों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे। ब्रजवासियों के बहुत प्रिय बन गए सनातन गोस्वामी, है ना। धीर अधीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत सरो पूजित हो, षट गोस्वामी अष्टकम यही बोल रहे हैं श्रीनिवास आचार्य। कोई धीर होता है या अधीर होता है ना, कोई साधु होते या कोई डाकू होते या चोर होते, सबके प्रिय थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी सबको प्रिय थे। तो इस प्रकार अपने मधु वचनों के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा वो सबका हृदय जीत लेते, और इसके कारण देखते हैं सनातन गोस्वामी ने जो ब्रजमंडल परिक्रमा की, और ये ब्रजमंडल परिक्रमा आज भी भक्त लोग करते हैं, और केवल हमारे संप्रदाय के लोग नहीं, और संप्रदाय के लोग भी ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथों की रचना भी की, और ग्रंथों की रचना जम जाते हैं कि कई ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसमें विशेष जो ग्रंथ हैं इसमें हरि भक्ति विलास उन्होंने लिखा, उसके ऊपर टीका भी दिग दर्शनी टीका लिखी, और श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने जो दशम स्कंध है उसके ऊपर उन्होंने टीका दी, इसको बृहद वैष्णव तोषणी टीका कहते हैं। और एक ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया जो अभी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने भी उसका प्रकाशन किया है, गोपी प्राण धर्म उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, उस ग्रंथ का नाम है लीलास्तव, श्री कृष्ण लीलास्तव, और बृहद भागवतामृत। और बृहद भागवतामृत ऐसा ग्रंथ है जो श्रील प्रभुपाल ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इस ग्रंथ का अध्ययन सभी भक्तों को करना चाहिए, जो कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, जो कृष्ण भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जो शुद्ध भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से बृहद भागवतामृत पढ़ना चाहिए। तो ये प्रभुपाल ने लिखा 1974 में चैतन्य चरितामृत में, और अब ये ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा। तो इनके तिरुभाव के बारे में बताया जा रहा है कि सनातन गोस्वामी काफी वृद्ध हो गए थे, लगभग वो 90 साल के थे, फिर भी वो परिक्रमा करना चाह रहे थे और अलग अलग भजन कुटीर में रहते थे। तो एक बार वो एक स्थान में रहे तो फिर से एक और बार मदन गोपाल जी आए और उन्हें फिर से दूध का लोटा दिया उनको, और मदन गोपाल जी कहते हैं कि हम लोग ब्रजवासी लोग दुखी हो जाते हैं देखकर कि आप ये पेड़ के नीचे रहते हैं, आप क्यों नहीं अपने लिए आप कुटिया बना लेते। तो इस तरह से उनकी प्रेरणा से वहां पर उन्होंने फिर भजन कुटीर भी बनाई। और एक समय की घटना है, सनातन गोस्वामी भजन करते लेकिन मच्छर वहां बहुत काटते थे मानसी गंगा, तो उन्होंने सोचा कि ये तो भजन में बड़ी समस्या है, तो सोचा ये स्थान में जब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर महादेव ने उनको दर्शन दिए, शिव जी ने दर्शन दिए और चक्रेश्वर महादेव ने उनको दर्शन दिए, उनको कहा कि आप निश्चिंत रहें, आज के बाद इस स्थान में कोई मच्छर नहीं आएगा, आप निश्चित रूप से भजन कर सकते हैं। तो आज भी वहाँ पर मच्छर की आबादी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, जिस स्थान में सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वयं शिव जी भी, महादेव गोपीश्वर महादेव कैसे भक्तों की सहायता करते हैं कृष्ण भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी जैसे हमने बताया कि गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करते थे, तो एक बार वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो अचानक वो मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर से एक ग्वाले ने उनको उठाया, उन्होंने कहा कि आप रोज परिक्रमा करते हैं, वृद्ध हो गए हैं आप, ये नियम आपके लिए आवश्यक नहीं है, इस अभ्यास को आप त्याग दीजिए। सनातन गोस्वामी लेकिन वो नियम के बड़े पक्के थे, फिर भी वो परिक्रमा करते रहते। तो एक दिन वास्तव में बहुत ही जो है असहाय अवस्था में गिर पड़े। तो मदन गोपाल जी बार बार ग्वाले के रूप में उनके सामने प्रकट होते, और एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे बार बार मेरे सामने आते हैं, वो मुझे छलते रहते हैं, क्या आप मुझे साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को मदन गोपाल जी ने दर्शन दिया और गोवर्धन शिला के ऊपर खड़े हुए और गोवर्धन शिला के ऊपर उनके चरण चिन्ह उन्होंने अंकित किए। उसमें बांसुरी के चिन्ह भी हैं, गोखुर का भी चिन्ह है। तो ये गोवर्धन शिला एक तो हम देख सकते हैं इधर जहाँ पर सेवाकुंज में राधा दामोदर मंदिर है, और दूसरा जयपुर के जो वहाँ के जो भक्त हैं वो बताते हैं वहाँ जो शिला है गोवर्धन शिला है, बोलते हैं वो शिला असली शिला है। जो भी है शिला दोनों ही गोवर्धन शिला है, और उस शिला का दर्शन वो पूर्णिमा के दिन कराते हैं, शायद कार्तिक पूर्णिमा के दिन कराते हैं या आज के दिन कराते हैं। तो इस प्रकार ये गोवर्धन शिला प्राप्त हुई सनातन गोस्वामी को, और उन्होंने कहा कि इसमें मेरे चरण चिन्ह हैं और इसकी परिक्रमा करना ही पर्याप्त होगा आपके लिए, इसकी कोई चार परिक्रमा कर लेगा तो गिरिराज परिक्रमा करने के बराबर है। लेकिन ये किसके लिए कहा उन्होंने, सनातन गोस्वामी के लिए कहा, क्योंकि वो लगभग 90 साल के हो चुके थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा को छोड़ के हम केवल वहाँ चार परिक्रमा लगा के आ जाएं और बोल दें कि हमने गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। ये उन भक्तों के लिए है जो भजन में पक चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए गिरिराज जी ने विशेष कृपा की। इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी गिरिराज जी की परिक्रमा करते और अंतरंग भाव से वो राधा कृष्ण की सेवा करते। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी ने 1554 में उन्होंने अपने देह का परित्याग किया, 1554 या 1555 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, आज के दिन। और मदन मोहन जी का जो मंदिर है, राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, वहाँ पर उनकी समाधि है, वहाँ पर उनका भजन कुटीर भी है द्वादश आदित्य टिला में। तो सनातन गोस्वामी का हम लोग आज के दिन स्मरण कर रहे हैं, उनका जीवन चरित्र के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रत्नाकर में और कई ऐसे ग्रंथों में। तो सनातन गोस्वामी प्रलीला में लवंग मंजरी हैं, राधारानी की सेवा में लगे हुए हैं, और ये सारे जो अष्ट मंजरियाँ हैं, यही मंजरियाँ जो हैं गौर लीला में आठ गोस्वामी के रूप में आते हैं। छह तो गोस्वामी हो गए जिनके बारे में जानते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जी गोस्वामी, और दो गोस्वामी और कौन, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, और एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी। तो ये सब प्रमुख मंजरियाँ हैं जो राधारानी की विशेष सेवा करते हैं। जैसे आठ गोपियाँ हैं तो उनकी आठ प्रमुख मंजरियाँ हैं, तो इस तरह से ये सब मंत्रियाँ जो हैं गोपियों की सेवा करते हैं और राधारानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई समीक्षा? तो ये था वास्तव में, प्रभुपाल ने एक बात और बताई है कि सनातन गोस्वामी जो ब्रज में मधुकरी करते थे, प्रभुपाल ने तात्पर्य में बताया है कि वास्तव में जो मधुकरी है ये वास्तव में परमहंसों के लिए होता है, और अधिक से अधिक सात घरों में वो जानते हैं, और सात घरों में कुछ नहीं मिलता है तो फिर उस दिन वो कुछ नहीं खाते। लेकिन प्रभुपाल फिर वहाँ दुख प्रकट कर रहे हैं, प्रभुपाल कह रहे हैं लेकिन वृंदावन में ऐसे कई भिखारी इकट्ठे हो गए हैं जो मधुकरी के नाम पे उधर भाजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये मधुकरी केवल परमहंसों के लिए होती है। आज तो जो भी जाता बोलता है मैं मधुकरी कर रहा हूँ, और भजन कुछ होता नहीं है। और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने वस्त्र दिए थे जो तपन मिश्र से मिला था उनको, उसका उन्होंने केवल बहिर्वास और कोपिन धारण किया था, एक याचक का लक्षण उन्होंने प्रकट किया, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि उन्होंने कोई बाबाजी वेश धारण किया हो। तो शास्त्र प्रमाण है, चैतन्य चरितामृत इसका प्रमाण है। जब कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है वैराग्य की स्थिति में, या तो स्वयं ही वो याचक के वस्त्र पहनता है या गुरु के द्वारा उसको याचक का वस्त्र दिया जाता है, जिस तरह से महापुरुष ने दिया, महापुरुष ने दिलवाया दिया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भी भेजा उन्होंने, जगन्नाथपुरी से आसन भेजा उनके लिए, बहिर्वास भेजा, है ना। तो कई बार गुरु देते हैं और कई बार कोई उस स्थिति में पहुंचता है तो स्वयं ही वो याचक का वेश धारण कर लेता है। लेकिन प्राकृत अवस्था में कोई अगर ये वेश धारण करेगा और प्राकृत अवस्था में जाकर भजन के बदले भोजन करेगा वृंदावन में जाकर, तो वो केवल सहिज्यवाद का ही वो प्रचार करेगा। तो इसके लिए हमारे संप्रदाय के आचार्य बड़े खिलाफ है। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने, उन्होंने जब आंदोलन की स्थापना की तो उन्होंने दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाहा कि वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और संन्यास आश्रम में भी अलग अलग स्तर हैं, कुटीचक, बहुतक, पारिव्रज का आचार्य और परमहंस। तो इस तरह से हम लोग संन्यास आश्रम के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो संन्यास आश्रम और अगर कोई याचक का वेश धारण करता है, जिस तरह सनातन गोस्वामी ने धारण किया या और अन्य गोस्वामी ने धारण किया, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कई बार लोग भ्रमित करते हैं कि बाबा जी वेश जो है पांचवा आश्रम है, पांचवा आश्रम कोई नहीं है, ये केवल याचक एक वो विरक्त व्यक्ति का जो है ये वेश, इसको वेश धारण कहते हैं। तो वेश धारण करना होता है, तो सन्यासी जो है वेश धारण करता है, उसके विशेष वस्त्र होते हैं, और कोई याचक की तरह रहता है, भिक्षु की तरह रहता है, तो उसके वस्त्र होते हैं। बस इतना ही अंतर है इसमें, और कोई अंतर नहीं है, बाकी नाम वही है और मंत्र वही है, बस ठीक है। हाँ जी, कौन? सबका तो याद नहीं है लेकिन कुछ लोगों का याद है। जी गोस्वामी जैसे विलास मंजरी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरे ख्याल से कस्तूरी मंजरी हैं, लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली मंजरी हैं, भूगर्भ गोस्वामी रास मंजरी हैं शायद, अब देखना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा। और कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी हैं, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनका याद नहीं, देखना पड़ेगा, राग मंजरी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राग मंजरी। तो ये सब नित्य परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं महापुरुष। जब भी गौरलीला होगी तो ये आएंगे, और जब भी ब्रजलीला होगी तो गोपी मंजरियों के स्वरूप में आएंगे, वो राधारानी की सेवा करते। तो ये जब महापुरुष की लीला में आते हैं तो बाहरी रूप से साधक के रूप में प्रकट होते हैं। संख्या पूर्वक नाम गाण नति भी कालावसानी कृतौ निद्रा आहार विहार कादि विजतौ चात्यंत दीनौ चयो। ये तो ये क्या है, साधक के रूप में दिखा रहे हैं गौर लीला में, और ब्रज लीला में अपने वास्तविक स्वरूप सिद्ध अवस्था में मंदरी भाव में राधारानी की सेवा करते। ठीक, हरे कृष्ण। श्री सनातन गोस्वामी तुर्भाव तिथि महोत्सव की, श्री व्यास पूर्णिमा महोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रभा।